नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निरविशेष शून्यवादी पाशात देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासाद श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुवन्ति दिव्येस्तवे वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित श्रीमद् भगवत गीता कोर्स के इस चतुर्थ दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। परम सौभाग्य है कि हम सब यहाँ पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से गाया हुआ दिव्य गीत को यहाँ पर समझने बैठे हैं। गीता का अर्थ ही होता है गीत, सॉन्ग। संसार के साधारण गीत भी होते हैं, परंतु यह जो गीत है संसार के साधारण गीतों से बहुत उत्तम गीत है। क्या अंतर है संसार के गीत में और भगवत गीत में, भगवत गीता में? संसार के जो गीत हैं, गाने हैं, वे आज नए हो सकते हैं परंतु कल पुराने हो जाते हैं। आज अच्छे लगते हैं परंतु कुछ दिन और बार बार सुनने के बाद वे अच्छे नहीं लगते हैं। परंतु भगवान के द्वारा जो गाया हुआ गीत है वे जितनी बार गाया जाए, जितनी बार सुना जाए, नाम रसज्ञानाम, क्या कर रहे हैं, यत् शृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे, भगवान के द्वारा गाया गया जो गीत है, यत् शृण्वताम, उसे सुनने से पद पद पर प्रत्येक अध्याय में, प्रत्येक श्लोक में, प्रत्येक चरण में, प्रत्येक शब्द में स्वादु स्वादु अत्यंत आनंद उत्पन्न होता है। और अन्य जो गीत है पुराने हो जाते हैं, परंतु भगवान का गीत कभी पुराना नहीं होता है। आज से हजारों वर्ष पहले भी लोग यह गीत गाते थे और हजारों वर्षों के बाद भी उतने ही उत्साह से, उतनी ही उत्कंठा से भगवान के इस गीत को गाने के लिए हम सब उपस्थित हुए हैं। परम सौभाग्य है, शास्त्र में यहां तक कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति भगवान के इस गीत को, भगवद गीता का श्रवण करता है, अध्ययन करता है, तो वह व्यक्ति भगवान को अपने पास बुला सकता है। जहां भगवद गीता होती है निश्चित वहीं पर भगवान होते हैं, वहीं पर भक्त होते हैं। अब देखिए, श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश जब हो रहा था, भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे, तब हनुमान जी महाराज उस रथ के ऊपर आकर बैठ गए थे। इस गीता के श्रोता हनुमान जी महाराज भी हैं। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वा नर युद्ध मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्य। ऐसे हे पवन पुत्र, मारुत की तरह जिनकी गति है, वेग है, ऐसे हनुमान जी महाराज भी श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण करते हैं। और यदि हम पृथ्वी में, इस संसार में गीता का श्रवण करेंगे तो शास्त्र में वेद व्यास जी लिखते हैं, तत्राहम निश्चितम पृथ्वीम नीवसामि सदैव ही। यदि कोई व्यक्ति, यत्र गीता विचारश्च, यदि कोई श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर विचार करता है, सोचता है, सुनता है, यत्र गीता विचारश्च पठनम पाठनम सुतम, पठनम सुन पढ़ना, पाठ करना, और श्रुतम सुनना, यदि कोई गीता को पढ़ता है या बारंबार अभ्यास करता है या सुनता है, तब वेद व्यास जी कहते हैं तत्रा, वहां पर साक्षात भगवान उपस्थित हो जाते हैं। अब ऐसा मत समझिए गीता सुनने के लिए आप लोग आए हैं, हमारे बाजू में कहीं ना कहीं भगवान बैठे हैं और बैठकर वे अपनी ही गीता का श्रवण कर रहे हैं। इसलिए जब आचार्य गण कथा करते हैं, गीता कहते हैं, तो एक आसन अलग से रख देते हैं भगवान के लिए, चाहे भगवान आते हैं। और यदि आपको विश्वास नहीं है तो जगन्नाथ जी की कथा को ही ले लीजिए, भगवान चाहते हैं अपनी कथा सुनना। द्वारका में रोहिणी जी के द्वारा कथा हो रही थी और चारों ओर से दरवाजे बंद कर दिए, पहरेदार के रूप में सुभद्रा को रखा गया ताकि कृष्ण और बलदेव इस कथा को सुन न पाए। कृष्ण और बलदेव को क्यों सुनाना नहीं चाहती थी रोहिणी जी? रोहिणी जी ने कहा, बलदेव जी की माता ने कहा कि यदि कृष्ण यह कथा सुन लेगा तो वृंदावन चला जाएगा, क्योंकि वैसे ही कृष्ण द्वारका में रहकर रात दिन रोते रहते थे, एक दिन भी कृष्ण के आंखों से आंसू नहीं सूखा जब वे गोकुल को छोड़कर गए। इसलिए ब्रज के संत कहते हैं, बलि जाऊं सदा इस नयनन पे बलिहारी छटा पर होता रहूं, कभी भूले न याद तुम्हारी राधे दिन रात यूं ही मैं रोता रहूं, श्री राधे ही राधे पुकारा कहूं, आंसू से मुख को धोता रहूं, ब्रजरानी तुम्हारे वियोग में दिन रात यही मैं रोता रहूं, दिन रात यही मैं रोता रहूं। ब्रजरानी के वियोग में, श्रीमती राधा रानी के वियोग में भगवान श्री कृष्ण रात दिन रोते रहते थे। तब उनकी पत्नियों को 16,108 पत्नी, और आज की पत्नी की तरह नहीं, कृष्ण एक बार यदि कह दे मुझे पानी का ग्लास चाहिए, 16,108 ग्लास आ जाता था, इतनी सेवा। और आज तो आज के पतियों को 16,108 बार बोलेंगे तब एक बार ग्लास आएगा, और तब भी एक बार ग्लास आ जाए तो अपने आप को सौभाग्य मान लेना चाहिए कि चलो आ रहा है। बहुत सुंदर ऐश्वर्य था, धन था, भगवान की सेवा हो रही थी, परंतु फिर भी रो रहे थे ब्रजवासियों के वियोग में। तब ये पत्नियों को प्रश्न उठा, कृष्ण इतने क्यों रो रहे हैं। रोहिणी जी के पास गई, कहा कि कृष्ण की बचपन की कथा सुनाओ। चारों ओर से दरवाजा बंद किया, कथा प्रारंभ हुई, सुभद्रा जी बाहर बैठी थी। उतने में कृष्ण और बलदेव जी आए। सुभद्रा अपनी बहना को पूछा, अंदर क्या हो रहा है। सुभद्रा ने कहा, जो भी हो रहा है आपको अंदर नहीं जाना है। ठीक है हम नहीं जाएंगे, परंतु अंदर क्या हो रहा है। सुभद्रा ने कहा, भैया आपकी कथा चल रही है, अब भैया कैसे रुक सकते हैं। भगवान, जहां पर भगवान का नाम लिया जा रहा हो और जहां पर भगवान की कथा हो रही हो, भगवान वहां उपस्थित हो जाते हैं। एक बार नारद जी ने पूछा था ना कि प्रभु आपका कोई विजिटिंग कार्ड हो तो दे दीजिए, कभी मिलना होगा तो अच्छा रहेगा। भगवान ने कहा, कोई प्रिंटिंग प्रेस वाला मिला नहीं है, इसलिए विजिटिंग कार्ड तो नहीं बनाया। तो नारद मुनि ने पेन निकाल कर कहा, तो बोलिए आपका एड्रेस मैं चाहता हूं, लिखना चाहता हूं, आप कहां रहते हो। तब नारद मुनि ने सोचा कि अब लिखने की क्या जरूरत है, आप तो वैकुंठ में ही रहते होंगे। तब भगवान कहते हैं, नारद, नाहम बसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं। तब नारद सोचने लगे, आप वैकुंठ में नहीं रहते हैं तो फिर रात दिन मेहनत करने वाले, ये योगा करने वाले योगियों के हृदय में रहते होंगे। भगवान कहते हैं, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूं, योगी नाम हृदयेषु वा। तब प्रभु आप कहां रहते हैं बता दीजिए, अब तो लिखना ही होगा। भगवान कहते हैं, नाहम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेषु वा। हे नारद, यत्र गायन्ति मदभक्ता तत्र तिष्ठामि। नारद, जहां पर मेरे भक्त मेरे नाम का कीर्तन करते हैं और मेरी कथा सुनते हैं, वहां मैं निश्चित उपस्थित रहता हूं। ये है भगवान की उपस्थिति। इसलिए साक्षात भगवान अपने मुख से कहते हैं कि जहां पर श्रीमद् भगवद गीता सुनाई जा रही हो और सुनी जा रही हो, तत्र अहम निश्चितम, निश्चित ही तत्र अहम, वहां पर मैं निवसामी, मैं रहता हूं सदैव ही, निश्चित रहता हूं। तो इस प्रकार से भगवद गीता की असीम अपरिसीम महिमा है। साक्षात भगवान को प्रकट करने वाली यह श्रीमद् भगवद गीता जो हम श्रवण कर रहे हैं। गत सत्र में हमने भगवद गीता के मूल विषय जीव के बारे में जाना। हम यह शरीर नहीं, हम आत्मा है, इसके कुछ प्रमाण आप लोगों ने सुने। और आत्मा का स्वभाव क्या है, आत्मा का गुण क्या है, आत्मा का स्त्रोत्र क्या है, और आत्मा कैसे प्रसन्न हो सकती है, आत्मा के बारे में कल हमने श्रवण किया। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे विषय वस्तु ईश्वर के बारे में जानेंगे। आज का विषय है भगवान। ये शब्द से सब लोग परिचित हैं, भगवान। तो सबसे पहले इस संसार में जैसे ही हम भगवान का नाम लेते हैं, तो इस संसार का कुछ ऐसा समाज है जो भगवान को स्वीकार नहीं करता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान है ऐसा मानते हैं, और कुछ लोग कहने वाले हैं भगवान नहीं है। संस्कृत में है को अस्थि कहा जाता है। जो ऐसा कहते हैं कि भगवान है उसे अस्तिक आस्तिक कहा जाता है, और जो लोग ऐसा कहते हैं भगवान नहीं है उसे न अस्तिक कहा जाता है। न अस्तिक, नास्तिक और आस्तिक। नास्तिक का अर्थ होता है जो भगवान को स्वीकार न अस्ति नहीं करते हैं, और आस्तिक का अर्थ होता है जो भगवान को स्वीकार करते हैं। तो प्रायः इस संसार में कई लोग कहते हैं कि आप लोग भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान भगवान, यदि भगवान है तो उसका प्रमाण क्या है? प्रमाण मांगते हैं, प्रमाण चाहते हैं। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वास्तव में भगवान भगवान कुछ नहीं है, ये तो समाज में उत्पात न मचे, समाज में ठीक से व्यवस्था बनी रहे, इसलिए ऋषि मुनियों ने और आचार्यों ने भगवान की सत्ता बनाकर रखी है, भगवान के नाम से सबको डरा रहे हैं ताकि समाज में उत्पात न मचे। जैसे जब कोई छोटा बालक होता है और बहुत रोता है तो माँ कहती है चुप हो जाने तो शेर आ जाएगा, कहते हैं ना। तो इसी प्रकार समाज में उत्पात न मचे इसलिए लोग कहते हैं कि भगवान है, वास्तव में भगवान नहीं है ऐसा मानने वाले कुछ लोग। तब कुछ लोग कहते हैं कि वास्तव में भगवान नहीं है, यदि भगवान होते हैं तो हमें कष्ट क्यों मिलता, भगवान होते तो हम सब सुखी होते, वास्तव में हम लोग दुखी हैं, हमें कष्ट हो रहा है, इसका अर्थ यह है कि भगवान नहीं है। तब कुछ लोगों का कहना यह है कि भगवान होते तो हमें दिखते, जैसे आप हमें दिख रहे हो इसलिए हम आप पर विश्वास कर रहे हैं, परंतु भगवान हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं इसलिए भगवान नहीं है। प्रायः इस संसार में समाज के लोग इस प्रकार से कहते हैं कि यदि भगवान होते तो दिखते, वास्तव में भगवान नहीं है ऐसा कहने वाले। परंतु यदि विचार किया जाए, लोग कहते हैं कि भगवान होते तो दिखते, नहीं दिखते हैं इसलिए नहीं है, परंतु आप विचार करो हम भगवान को कैसे देख सकते हैं। भगवान की बात छोड़ दीजिए, हम हवा को नहीं देख सकते हैं, ऐसे लोगों को कहना चाहिए आप हवा को देख सकते हो, देख रहे हो तो क्या हवा नहीं है? हवा है फिर भी नहीं दिखाई दे रही है, वैसे ही भगवान है परंतु आपको दिखाई नहीं दे रहे, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वे नहीं है। तो भगवान का अस्तित्व वास्तव में है। नास्तिक लोगों का तर्क बिल्कुल नास्तिक है। भगवान है तब तुरंत प्रश्न उठेगा प्रमाण क्या है भगवान है इसके, क्योंकि सबूत चाहिए, प्रूफ चाहिए। तो आइए भगवान है उसका प्रथम प्रमाण। इस संसार में हम कुछ ऐसी रचनाएं देख रहे हैं, ऐसा क्रिएशन देख रहे हैं, तो उस रचना को देखकर हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि इसके पीछे कोई रचनाकार है। हम इस संसार में देखते हैं कि बहुत सुंदर फूल है, आप बगीचे में कभी जाइए कितने प्रकार के फ्लावर हैं, फूल हैं, और अद्भुत फूल हैं। अब आप देखिए कोई बालक एक फूल एक पेज पर ड्राइंग करके लाया और आपको बताया कैसा है, आप कहेंगे बहुत अच्छा है, वेरी गुड। तब आप कहोगे किसने बनाया, किसने ड्राइंग किया? बालक यदि कहे कि ये ऑटोमेटिक हो गया तो विश्वास करेंगे? नहीं, किसी ना किसी ने तो वो फूल बनाया है, इतना सुंदर आकृति किसी ना किसी ने बनाया है। ठीक उसी प्रकार ये तो प्राकृत फ्लावर है, इस संसार के इतने सारे फूल और उसमें सुगंध, इसे बनाने वाला कोई ना कोई है, यदि ड्राइंग करने के पीछे किसी का हाथ हो सकता है तो इतना सुंदर बगीचे में और इतने सारे फूल फूल फल वृक्ष कोई ना कोई है, कौन है ये बाद में चर्चा करेंगे, परंतु कोई ना कोई है इसे बनाने वाला। सुंदरता है इस संसार में आप देखें तो उसे सुंदर बनाने वाला कोई है। प्राय जो वैज्ञानिक होते हैं साइंटिस्ट होते हैं वे इस बात पर स्वीकार नहीं करते हैं। वे लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ये सब ऑटोमेटिक हो गया, जस्ट बाय चांस। डार्विन का सिद्धांत था ये जो पृथ्वी है किसी ने बनाई नहीं, ये बाय चांस हो गई। बिग बैंग थियरी हम लोग पढ़ चुके हैं। एक दिन बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और उस विस्फोट से जल बना, पृथ्वी बनी, और उस विस्फोट से इतना सुंदर पृथ्वी का निर्माण हुआ। आप विचार कीजिए, विस्फोट से निर्माण हो सकता है? मानो यहां पर बम फूटे तो बड़ी बिल्डिंग बन जाएगी, जो बनी है वह टूट जाएगी। विस्फोट से निर्माण नहीं होता है, विस्फोट से टूटता है। परंतु यह साइंस का और डार्विन का कहना है विस्फोट हुआ और यह पृथ्वी बनी। लेकिन उन दिनों एक वैज्ञानिक जो आस्तिक वैज्ञानिक थे और उनका नाम था न्यूटन, न्यूटन ने जब यह बात सुनी तो अपने सभी साइंटिस्ट मित्रों को अपनी लेबोरेटरी में बुलाया और न्यूटन ने बहुत सुंदर एक मॉडल बनाकर रखा था। मॉडल कैसा था, जैसे ही वह चक्र को घुमाया तो वहां पर बादल बन गए, बादल से बारिश होने लगी, छोटे छोटे घास उगे थे। तो यह मॉडल उन्होंने देखा, सूर्य प्रकाश ये वो सब कुछ जैसे इस पृथ्वी पर होता है। तो न्यूटन ने जब अपने मित्रों को वैज्ञानिकों को जब यह मॉडल बताया तो सब लोग खुश हो गए, इतना सुंदर मॉडल ये किसने बनाया, किसने बनाया। जब प्रश्न पूछा तो न्यूटन ने कहा कि कल रात को मैं सो रहा था और रात को अचानक बम फूटा, ऐसी आवाज आई, धड़ाका हुआ मेरी इस लेबोरेटरी में, और जैसे मैं लेबोरेटरी में आया देखा तो ये मॉडल बना हुआ था। तब उसके मित्र कहने लगे कि क्या मजाक कर रहे हो हमारे साथ, बम फूटने से ऐसा मॉडल हो सकता है? तब न्यूटन ने कहा कि बम फूटने से इतना सा छोटा मॉडल नहीं बन सकता है, तो आप कहते हो बम फूटने से इतना बड़ा पृथ्वी बना, ये कैसे हो सकता है? बाय चांस नहीं हुआ, इस पृथ्वी को बनाने वाला कोई ना कोई है। जैसे इतना छोटा सा मॉडल बनाने के लिए किसी की आवश्यकता है, तो इतनी बड़ी पृथ्वी और पृथ्वी की सुंदरता को बनाने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। और जिसकी आवश्यकता है, जिसने यह बनाया है, वह है भगवान। यह है पहला प्रमाण। दूसरा प्रमाण, हम देखते हैं कि इस संसार में कई ऐसी वस्तुएं जो कानून से चल रही है, नियम से चल रही है। आप देखिए इस संसार में कई वस्तु नियम से चल रही है, तो नियम से चल रही है इसका अर्थ यह है कि नियम को बनाने वाला कोई है। जैसे कि आप रास्ते से जा रहे हो तो बीच में सिग्नल पड़ते हैं, तो बीच में सिग्नल है, रेड हो जाए तो खड़े रहना है, ग्रीन हो जाए तो चलना है, तो सिग्नल द्वारा एक नियम बनाया गया। तो सिग्नल को देखकर हम हमारी बुद्धि से यह निर्णय ले सकते हैं कि किसी ना किसी ने इसे बनाया है। ठीक उसी प्रकार इस संसार में कई ऐसी वस्तु है जो नियम से है। जैसे सूर्य रोज सुबह नियम से उदय होता है और शाम को अस्त हो जाता है कि नहीं नियम? हम लोग कभी जल्दी और लेट उठते हैं, परंतु सूर्य तो अपने टाइम से आ ही जाता है, कितना नियम से है। दूसरी बात देखिए, हमारे भारत में तीन ऋतुएं हैं, तीन सीजन है, ठंडी गर्मी और बारिश। तो आप देखिए कितना नियम से ये ठंडी गर्मी और बारिश आ जाती है। और आप देखिए, आप ये समुद्र को देखिए, समुद्र में अगाह मात्रा में जल है। आप देखिए समुद्र में कितना पानी है, परंतु समुद्र अपनी सीमा रेखा से 50 फुट भी आगे नहीं आता है। आप कभी नरीमन पॉइंट जाइए, समुद्र के किनारे पर बहुत बड़ी दीवार खड़ी की है, कभी उस दीवार से बाहर नहीं आया। नहीं तो इतना सारा पानी थोड़ा तो बाहर आ सकता है। आप देखिए हमारे घर पर छोटी सी सिंटेक्स की टंकी है पानी की, उस टंकी को कंट्रोल करने के लिए कभी कभी भारी पड़ जाता है, ओवरफ्लो हो जाती है, घर पूरा भीग जाता है। तो एक छोटी सी टंकी के पानी को कंट्रोल करने के लिए हमारे घर पर किसी की आवश्यकता है, तो इतने बड़े समुद्र को कंट्रोल करने के लिए कोई है नहीं? कोई ना कोई है जो समुद्र को कंट्रोल कर रहा है, जो सूर्य को कंट्रोल कर रहा है, जो सीजन ऋतुओं को कंट्रोल कर रहा है नियम में। तो कंट्रोलर कंट्रोल इस संसार में कुछ ना कुछ कंट्रोल में है, नियम में है। इसका अर्थ है ये नियम बनाने वाला कंट्रोलर कोई ना कोई है, जिसके द्वारा यह सब कुछ बिल्कुल व्यवस्थित रूप से हो रहा है, और वह है भगवान। यह दूसरा प्रमाण। तीसरा प्रमाण, इस सृष्टि की रचना के पीछे, इस सृष्टि की रचना को देखकर हम यह जान सकते हैं कि इसके पीछे भगवान का हाथ है। जैसे गीता में भगवान कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत् कश्चित् दस्ति धनंजय मई इदम सर्वप्रोत सूत्रे मणि गणा इव। भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं। जैसे मोतियों की माला होती है, मोतियों की माला, जैसे गले में मोती की माला पहनते हैं, ते मोती की माला को देखकर हम हमारी बुद्धि से सोच सकते हैं कि इसके पीछे धागा का हाथ है। यद्यपि धागा दिख नहीं रहा है, अपने गले में जो माला पहनी है धागा नहीं दिख रहा है, परंतु ये माला को देखकर यह निर्णय ले सकते हैं कि अंदर धागा होगा। ठीक उसी प्रकार इस संसार में आप देखिए, ये ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, पृथ्वी है, पृथ्वी के नीचे अतल वितल तलातल पाताल रसातल, पृथ्वी के ऊपर जन लोक स्वर्ग लोक मर लोक तप लोक ब्रह्म लोक, और उसमें भी बहुत सारे लोग हैं, सूर्य ग्रह है, पृथ्वी है, मंगल है, नेपच्यून प्लूटो इत्यादि जो भी है, वह सब ग्रह घूम रहे हैं। एक तो स्वयं घूम रहे हैं, खुद घूम रहे हैं, और भी दूसरे की ओर घूम रहे हैं। तो ये सब घूम रहे हैं, लेकिन फिर भी आज तक एक्सीडेंट नहीं हुआ, और सब हवा में लटक रहे हैं। तो इसका अर्थ यह है कि इसको रोकने वाला, बचाने वाला, टिकाने वाला कोई ना कोई है, कोई ना कोई है, जिसे जो इसे हवा में टिका कर रखा है। तो आज की साइंस कहते हैं कि तो ग्रेविटी फोर्स से टिका है, भगवान थोड़ी ना टिका कर रखे हैं। ग्रेविटी फोर्स, फोर्स माने बल के द्वारा, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा यह सब ग्रह टिके हैं। परंतु यह गुरुत्वाकर्षण बल कहां से आया? बल है, अब देखिए साइंस को ही लेकर आप देखिए, साइंस कहता है कि सारे ग्रह हवा में लटक रहे हैं। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का बल है, ग्रेविटी फोर्स है, फोर्स का होता है बल। तो साइंस कहता है कि बल के द्वारा ये टिके हैं, तो बल है, इसका अर्थ है कि कोई ना कोई बलवान होगा। जैसे मान लो किसी ने आपको थप्पड़ मारा, आप कहेंगे ये तो बल ने मारा, परंतु किसी के बल ने आपको थप्पड़ मारा ना, बल है, इसका अर्थ है कि बलवान कोई है। तो बलवान कौन है? गीता में भगवान कहते हैं, बलम बलवता चाहम काम राग विवर्जितम। बलम बलवता बलवानों में भी बलवान यदि कोई है, च अहम अर्जुन मैं हूं। तो इस प्रकार ये सब रचनाओं को देखकर हम जान सकते हैं कि नहीं, भगवान का हाथ है, भगवान का अस्तित्व है। और उसके बाद चौथा प्रमाण, हम साक्षात हमारे अनुभव से ये पता लगा सकते हैं कि भगवान का अस्तित्व है, परंतु हमारे अनुभव से प्रत्यक्ष देखकर यदि पता लगाना है तो उसके लिए कुछ करना होगा। डायरेक्ट यदि भगवान को देखना है, भगवान का अनुभव करना है, तो उसके लिए ऐसे ही अनुभव नहीं होगा। जैसे श्रीमद् भागवतम में ब्रह्मा जी कहते हैं, यथाग्नि मेदस्य वृतम च गोषु भुवियन्न अम्बु उद्दमने च वृत्तिम। भगवान है परंतु उसे देखने के लिए कुछ करना होगा ना, तो डायरेक्ट भगवान के अनुभव से भी भगवान को जाना जा सकता है, भगवान का अस्तित्व है उसे पहचान सकते हैं, परंतु कुछ करना होगा। एक बार मैं चन्नी रोड से ट्रेन से बोरीवली जा रहा था, तो कुछ जल्दी जाना था लेक्चर में, इसलिए विरार ट्रेन में चढ़ गया। तो विरार ट्रेन में गेट के पास खड़ा था और रोज मैं हाथ में माला लेकर हरे कृष्ण महामंत्र जपता था और एक व्यक्ति रोज मुझे देखता था। तो एक दिन गेट पर मैं खड़ा था तो उन्होंने मुझे कहा कि क्या रोज तुम इतना बड़ा तिलक करते हो, कंठी पहनते हो और हरे कृष्ण जपते हो, क्या कभी देखा है कृष्ण को? तो मैंने कहा कृष्ण को नहीं देखा तो क्या कृष्ण नहीं है? बोला नहीं है, यदि कृष्ण होते तो दिखते। मैंने सोचा क्या तर्क करना है इसके साथ, ठीक है मैंने कहा चलो नहीं है, आप नहीं मानते हो तो नहीं है। लेकिन तुरंत प्रभुपाद जी की कृपा से, भगवान की कृपा से मेरे मन में एक बात आई, मैंने कहा अच्छा ठीक है भगवान नहीं दिख रहे हैं, नहीं है भगवान, चलो मान लिया आपकी बात। लेकिन मैंने कहा कि ये हम ट्रेन में खड़े हैं, ट्रेन चल रही है इतनी रफ्तार से, ये ट्रेन को चलाने वाला कोई है कि नहीं? उसने कहा हाँ है ना, तब तो चल रही है। मैंने कहा ट्रेन को चलाने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है, यदि ट्रेन को चलाने वाला होता तो मुझे दिखता, यहां खड़े खड़े तो नहीं दिख रहा है। तब उसने कहा नहीं, ट्रेन को चलाने वाला है, यदि देखना है तो स्टेशन आएगा, नीचे उतर आगे के डिब्बे में जाओ, वह दिखाई देगा। मैंने कहा कि इतने तुच्छ पंच महाभूत से बने हुए देह को देखने के लिए ट्रेन से उतर कर आगे जाकर चलने की आवश्यकता है, तो सच्चिदानंदमय भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे खड़े खड़े मिल जाएंगे। एक तुच्छ मनुष्य को देखने के लिए आप कह रहे हो कि ट्रेन से उतरो, राह देखो, उतरो, आगे चलकर फिर देख कर आओ, एक मनुष्य को देखने के लिए इतना मेहनत, तो सच्चिदानंदमयी परब्रह्म भगवान को देखने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्या ऐसे ही मिल जाएंगे? कुछ करने की जरूरत है। इसलिए महाप्रभु सनातन गोस्वामी से कहते हैं, प्रभु कहे सनातन कृष्णेर रतन धन, प्रभु कहे सनातन कृष्णेर रतन धन, अनेक जतन मिलाय। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से कहते हैं कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं परंतु प्रभु कहे सनातन कृष्ण रे रतन धन, अनेक जतन ते मिलाए। उसके लिए जतन करना होगा, मेहनत करनी होगी, कुछ करना होगा। और उसी बात को ब्रह्मा जी श्रीमद भागवतम के अष्टम स्कंद के छठे अध्याय में भगवान श्री विष्णु को प्रार्थना करते हुए कहते हैं समुद्र मंथन के प्रसंग में कि हे प्रभु, वास्तव में आप इस संसार में सभी जगह पर हो, परंतु आपका दर्शन करने के लिए कुछ करना होगा ना। वो दृष्टांत देते हैं, यथाग्नि मेदस्य वृतम च गोषु। पहला दृष्टांत, जैसे लकड़े में अग्नि है, यहां पर जितना भी लकड़ा आप देख रहे हो ये सभी लकड़े में अग्नि है, परंतु उस अग्नि को देखने के लिए कुछ मेहनत करनी होगी, लकड़े को घिसना होगा। दूसरा दृष्टांत देते हैं भूमि अंबु, जैसे जमीन में, भूमि में आलू है, वेजिटेबल है, मान लो आपको कहा जाए कि इस भूमि में आलू है जरा निकाल लो आप, तो कोई मूर्ख यदि जमीन को गाड़ने लगे, निकालने लगे और बहुत बड़ा खड्डा कर दे और फिर आए, हमने तो बहुत प्रयास किया, खड्डा किया, परंतु आलू तो नहीं दिखा। अरे भूमि में आलू है, परंतु उसे प्राप्त करने के लिए कुछ विधि है कि आलू के बीज बोना है, सिंचन करना है, तब जाकर मिलेंगे। वैसे इस जगत में भगवान सर्वत्र है, परंतु उसे देखने के लिए कुछ करना होगा, कुछ विधि के अनुसार। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंच रात्रक विधि बिना एकांत ये को हरर भक्ति उत्पाद तात एव कल्पते। विधि के साथ, बिना विधि के भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करोगे तब भी विफल हो जाओगे। तो भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं, उसके लिए कुछ मेहनत, कुछ विधि करनी होगी। और एक ब्रह्मा जी दृष्टांत देते हैं, मान लो किसी को गाय दिया जाए और कहा जाए कि इससे दूध निकाल लो, तब वह गाय को काट दे, दो भाग कर दे, दो हिस्सा कर दे और ढूंढे, अरे इसमें दूध तो है नहीं। गाय में दूध है, परंतु उस दूध को प्राप्त करने के लिए कुछ विधि है, कुछ मेहनत है। गाय को घास खिलाना है, घास खिलाने के बाद बछड़े को लेकर जाओ, बछड़ा जब प्यार से गाय के स्तन को दूध पिएगा तो गाय अपना दूध स्तन में छोड़ेगी और फिर वह दूध प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से गाय में दूध है, भूमि में अन्न है और लकड़े में अग्नि है, परंतु उसे प्राप्त करने के लिए कुछ विधि है, कुछ मेहनत करना होगा। वैसे ही भगवान इस संसार में अत्र तत्र सर्वत्र सब जगह पर है, परंतु उसे देखने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए कुछ करना होगा। और क्या करना होगा, ब्रह्मा जी कहते हैं इसके लिए मात्र भक्ति करनी है। भक्ति से देख सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं भगवान को दिखाओ, परंतु इस चर्म चक्षु से भगवान को नहीं देख सकते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। अपनी आंखों में यदि प्रेम का अंजन लगा दिया जाए तो निश्चित भगवान को सदैव नित्य निरंतर देख सकते हैं। बड़े बड़े संत देखते हैं। तो प्रत्यक्ष भगवान के अनुभव के द्वारा हम यह जान सकते हैं कि भगवान का अस्तित्व है। इस प्रकार से ये कई प्रमाणों के द्वारा यह साबित हुआ कि भगवान का अस्तित्व है। तब भगवान का अस्तित्व है, प्रायः सब लोग इस पर विश्वास करते हैं, परंतु बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहां पर है कि ठीक है भगवान का अस्तित्व है, परंतु भगवान कैसे है। यहां बहुत बड़ी गड़बड़ मार देते हैं। कुछ लोग कहते हैं भगवान एकमात्र पोस्ट है, कोई भी आ सकता है, कोई भी बदल सकता है। कहते हैं ना, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, परंतु एक ऐसा संप्रदाय धर्म है जो भगवान को पोस्ट मानते हैं। कहते हैं कि आज हमारे फलाने भगवान है, कृष्ण हमारे भगवान बनेंगे, मतलब घूमते रहेंगे सब लोग उस पोस्ट पर, जैसे प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट होती है। तो कुछ लोग कहते हैं भगवान पोस्ट है, तो कुछ लोगों का कहना है कि भगवान कोई भी बन सकता है, तपस्या करो, मेहनत करो, तुम भी भगवान बन जाओगे, हम भी भगवान बन जाएंगे। तो कुछ लोगों का कहना है कि बहुत सारे भगवान हैं, कुछ लोगों का कहना है कि भगवान थे, ऐसा नहीं, भगवान का अस्तित्व था परंतु अभी भगवान नहीं रहे हैं। और दृष्टांत देते हैं कि द्वापर युग में जरा नाम के शिकारी ने कृष्ण को बाण मारा, कृष्ण मर गए, चले गए, भगवान थे परंतु मर गए। तो वास्तव में भगवान कभी मरते नहीं है। भगवान के आगे न तो जन्म न तो मृत्यु लगाया जा सकता है। भगवान का प्राकट्य होता है, अप्राकट्य होता है, आविर्भाव होता है, तिरोभाव होता है। भगवान का जन्म और मरण नहीं होता है। मैं तो अक्सर कहता हूं भगवान का जन्म मरण ये तो सूर्य की तरह हुआ। मानो कोई आज अभी यहां पर आकर कहे, क्या बताए, बड़े दुख की बात है, सुबह सूर्य देव का जन्म हुआ था परंतु बेचारे शाम को मर गए, आइए शोक सभा रखते हैं। अरे सूर्य मरा नहीं, सूर्य सुबह उदय हुआ, शाम को अस्त हो गया, कल फिर से उदय होगा, फिर से अस्त होगा, उदय अस्त। इसका अर्थ यह नहीं कि सूर्य सुबह जन्म लिया और शाम को अस्त हो गया। ठीक उसी प्रकार भगवान नित्य है, भगवान जब चाहे तभी संसार में आते हैं चले जाते हैं, आना जाना होता रहता है। इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान आए तो जन्म हुआ, चले गए तो मर गए। तो कुछ लोग कहते हैं कि भगवान थे परंतु मर गए, तो कुछ लोगों का मानना है कि भगवान जो है शक्ति है, शक्ति ही सब कुछ है, शक्ति ही सब कराती है। तो कुछ लोग कहते हैं भगवान प्रकाश है, ज्योति, बस ज्योति को देखिए, ज्योति को। तो कुछ लोगों का कहना है कि भगवान शून्य है, शून्यवादी, निर्विशेष शून्यवादी। तो इस प्रकार से भगवान के प्रति कई लोगों की धारणा है, भगवान के अस्तित्व के प्रति कई लोगों की अपनी अपनी मन और बुद्धि के अनुसार अलग अलग धारणा बनाकर बैठे हैं। परंतु वास्तव में भगवान कौन है और कैसे हैं यह हम जानेंगे। और प्रायः बहुत बड़ा समाज भगवान को निराकार कहता है और एक समाज भगवान को साकार कहता है। तो भगवान साकार है या निराकार है, इसका उत्तर भगवद गीता और श्रीमद् भागवत में कहा गया है, भगवान साकार भी है, भगवान निराकार भी है। वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम यत ज्ञानम अद्वयम ब्रह्म इति परमात्मा इति भगवान इति शब्दते। भगवान के तीन फेज हैं, भगवान के तीन स्वरूप हैं, एक साथ तीन स्वरूप। कैसे, जैसे एक ही इलेक्ट्रिक सिटी है परंतु उनके तीन फेज होते हैं ना। आप देखिए प्लग पॉइंट में तीन फेज, एक ही इलेक्ट्रिक सिटी साथ में चलती है तीन फेज को लेकर। वैसे भगवान एक है परंतु एक साथ तीन जगह पर रहते हैं। और वदन्ति तत्तत्व विद, बड़े बड़े लोग वदन्ति कहते हैं क्या कि भगवान के तीन स्वरूप कौन से, तो कहते हैं भगवान का प्रथम स्वरूप उनके धाम में साकार स्वरूप के रूप में द्विभुज, बहुत सुंदर रूप। भगवान भगवान स्वरूप से अपने धाम में रहते हैं, वही भगवान परमात्मा के स्वरूप से सभी जीवों के हृदय में रहते हैं, और वही भगवान ब्रह्म के रूप में इस संसार के कण कण में रहते हैं। एक साथ तीन जगह पर अपने धाम में भी रहते हैं, सभी जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में, और संसार के कण कण में ब्रह्म के रूप में रहते हैं। तो भगवान के धाम में जो द्विभुज रूप है, तो भगवान वहां पर साकार भी है और ब्रह्म के रूप में भगवान निराकार भी है। तो इसका अर्थ ये, उत्तर यह हुआ, भगवान निराकार भी है, भगवान साकार भी है। तब प्रश्न यह हो सकता है, तो यह साकार और निराकार में मूल रूप कौन सा है? तो भगवान का मूल रूप जो है साकार है, क्योंकि साकार से ही निराकार उत्पन्न हुआ है, साकार से ही निराकार होता है। और जो बुद्धिमान होते हैं वह भगवान के इस तीनों रूप को स्वीकार करते हैं। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं परम सत्य को जानने के लिए तीन कैटेगरी है। इस संसार में भगवान को निराकार कहने वाले गलत नहीं है, ऐसा नहीं कि किसी ने भगवान को निराकार कह दिया तो ये गलत है, वह गलत नहीं, परंतु उसका ज्ञान जो है अपूर्ण है, पूर्ण ज्ञान नहीं है। पूर्ण ज्ञान क्या है? भगवान निराकार भी है और भगवान साकार भी है। कुछ नए लोग इस बात को समझने में थोड़ी कठिनाई हो रही होगी, मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं, इससे आप तुरंत समझ जाओगे। मानो एक गांव था और उस गांव में बहुत टिपिकल विलेज था, वहां पर कोई इतनी वाहन व्यवस्था नहीं थी, परंतु अब रेल मंत्री बदलने के बाद, अब रेल मंत्री बदला है ना, कोई माता जी आई है ना, कौन है, ममता बनर्जी। चलो लालू प्रसाद यादव ने तो कुछ नहीं किया, परंतु ममता बनर्जी ने इस गांव में रेल की पटरी बिछाई, सोचा कि गांव गांव में रेल जानी चाहिए। उस गांव से 15-20 किलोमीटर दूर रेल की पटरी बिछाई गई, तो गांव वाले सोचने लगे, और दूसरे दिन उस ट्रेन का मुहूर्त था, ओपनिंग था, और वो गांव वाले, गांव में रहने वाले ने कभी किसी व्यक्ति ने ट्रेन नहीं देखा था, जीवन में पहली बार ये सुन रहे थे ट्रेन और रेल ये क्या होता है। तो गांव वालों ने अगले पिछले दिन एक साथ बैठकर मीटिंग की कि देखो आने वाले कल ट्रेन शुरू होने वाली है, रेल शुरू होने वाली है, परंतु हम तो जानते नहीं है रेल क्या है, ट्रेन क्या है, और हम सब लोग चले जाएंगे देखने के लिए तो ये गांव का जो खेतीबाड़ी काम है वो कौन करेगा। तब गांव वालों ने मीटिंग की और कहा कि काम करते हैं, हम हमारे गांव से 3 जन को भेजते हैं, 3 लोगों को भेजते हैं, और वो देख के आएंगे और हमें बताएंगे ट्रेन कैसी होती है। तो गांव वालों ने अनुमोदन किया, ठीक है ये 3 लोग। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, तीन लोगों को भेजा गया। 3 में से 1 व्यक्ति जो था जिसके पास धैर्य नहीं था, रात भर सो नहीं पाया और सुबह की राह देख रहा था, सुबह होने से पहले ही रातों रात वो दौड़ने लगा ट्रेन को देखने के लिए। अब उस समय ट्रेन आ रही थी, रात का समय था और रात को ट्रेन की लाइट शुरू होती है, तो वो पहला व्यक्ति गया दौड़ा और रात को ट्रेन की लाइट शुरू थी, दूर से देखा ट्रेन माने ज्योति, वहां से रिटर्न हो गया और गांव वालों को आकर दिखाया ट्रेन मतलब ज्योति प्रकाश। अच्छा, गांव वाले सोचने लगे अब तो ये प्रकाश है। तब दूसरा व्यक्ति जो था उसके बाद पहुंचा और उसके बाद पहुंचकर देखा कि ट्रेन में ज्योति लाइट भी है और कुछ डिब्बे की तरह लग रहा है दूर से, तो देखा कि ट्रेन मतलब ज्योति और डिब्बा, वहां से रिटर्न हो गया और गांव वालों को आकर बताया ट्रेन अर्थात एक लाइट है और एक डिब्बा है बस। लेकिन तीसरा व्यक्ति जो था वो गया ट्रेन के नजदीक, उन्होंने देखा ट्रेन में लाइट भी है, ट्रेन डिब्बे के समान भी है, परंतु वो प्लेटफॉर्म के ऊपर पहुंचा और ट्रेन के अंदर गया और देखा कि नहीं ट्रेन में तो सीट भी है, फैन भी है, विंडो भी है। और तीसरा व्यक्ति अपना अनुभव गांव वाले को आकर सुनाया और कहा देखो भाई ट्रेन में लाइट भी है, डिब्बा भी है, और ट्रेन के अंदर फैन भी है, सीट भी है और विंडो भी है। अब आप देखिए 3 लोगों ने अपना अपना अनुभव सुनाया, 3ों में से गलत कोई नहीं है, परंतु पूर्ण अपूर्णता का भेद है। अब आप ही कहिए कि ये 3ों में से पूर्ण अनुभव किसने सुनाया? तीसरे ने। ठीक उसी प्रकार इस संसार में परम सत्य भगवान को कुछ लोग ज्योति कहते हैं, तो ज्योति मानने वाले ठीक है लेकिन पूर्ण ज्ञान नहीं है, तो कुछ लोग कहते हैं भगवान ज्योति भी है और परमात्मा भी है। परंतु जो सबसे ज्ञानी है, बुद्धिमान है, वह कहते हैं भगवान ज्योति भी है, परमात्मा भी है और साकार भी है, उनका आकार भी है, द्विभुज है और अपने धाम में रहते हैं। इस प्रकार से परम सत्य के बारे में पूर्ण ज्ञान रखने वाले वदन्ति, क्या वदते हैं, क्या कहते हैं, वदन्ति तत्तत्व इदस्तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्म इति परमात्म इति भगवान इति शब्दते। भगवान एक साथ 3 स्वरूप में, भगवान परमात्मा और ब्रह्म के रूप में। और प्रभुपाद जी अक्सर भगवद गीता और भागवतम में सूर्य का उदाहरण देते हैं, जैसे हम सूर्य को देखते हैं तो कुछ लोग कहते हैं मात्र प्रकाश है, सूर्य मात्र प्रकाश है, तो कुछ लोग कहते हैं सूर्य एक गोला है, परंतु जो बुद्धिमान है वह जानता है सूर्य प्रकाश भी है, वह गोला है और सूर्य का एक देवता भी है उसे चलाने वाला, जिसे विवस्वान कहा जाता है। वैसे परम सत्य भगवान इस प्रकार साकार भी है और निराकार भी है, ब्रह्म के रूप में निराकार है और अपने धाम में द्विभुज रूप में वह साकार है। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान का व्यक्तित्व है, भगवान एक व्यक्ति है। तो ये है भगवान का स्वरूप रूप के भगवान का आकार है। तो हमने ये जाना कि भगवान का अस्तित्व है और ये जाना भगवान निराकार भी है और साकार भी है। परंतु अब हमारा प्रश्न ये है कि ठीक है वही साकार और निराकार और परमात्मा तीनों स्वरूप में रहने वाले है कौन। सबसे बड़ा प्रश्न भगवान कौन है, हु इज गॉड। और हमारे भारत का ये सबसे बड़ा प्रश्न है। मैंने कहा पहले दिन ही कहा था कि आप किसी मुसलमान को पूछिए भगवान कौन तो कहेगा अल्लाह। लाखों करोड़ों मुसलमान को पूछिए भगवान कौन तो करोड़ों के मुख से एक ही जवाब मिलेगा अल्लाह। और क्रिश्चियन धर्म वाले को पूछिए भगवान कौन, लाखों क्रिश्चियन को पूछिए तो एक ही जवाब देंगे जीसस क्राइस्ट। परंतु हिंदुओं को पूछिए भगवान कौन, कुछ लोग कहेंगे गणपति भी भगवान, शिवजी भी भगवान, ये देवी भगवान, ये देवता भगवान, तुम भी भगवान, मैं भी भगवान, सब भगवान, ये बाबू भी भगवान, ये बाबा भी भगवान, सब कंफ्यूज सब लोग। भगवान कौन है? और भारतवर्ष में रहकर इतना सांस्कृतिक देश है हमारा, आप देखिए हमें गर्व लेना चाहिए हमारे देश पर, लेकिन धिक्कार है उन लोगों को कि इतना पवित्र भूमि पर जन्म लेने के बाद भी आज तक यह नहीं जान पाए कि भगवान कौन है। आप देखिए अनंत ब्रह्मांड, अनंत लोक और पृथ्वी में भी बहुत सारी जगह है, परंतु एशिया में भारत वर्ष जो है कुछ अद्भुत जगह है। क्योंकि आप देखिए भगवान के जितने भी अवतार भारत में, जितनी भी पवित्र नदियां भारत में, जितने भी बड़े बड़े संत भारत में, जितने भी वैदिक शास्त्र सब भारत में, लेकिन भारत वाले को ही नहीं पता भगवान कौन है। अब क्या किया जाए, जानना चाहिए भगवान कौन है। तो भगवान कौन है ये जानने के लिए, भगवान का परीक्षण करने के लिए पांच चीज को देखना होगा। जैसे गुरु का परीक्षण करने के लिए मैंने आपको पांच योग्यता बताई थी, वैसे तो बहुत सारी है परंतु मुख्य पांच में काम हो जाता है एटलीस्ट। तो यदि भगवान को जानना है तो पांच पॉइंट आप सुन लीजिए, ये पांच पॉइंट यदि किसी में है तो भगवान हो सकते हैं। पहला पॉइंट, भगवान परम कंट्रोलर होने चाहिए। पहला पॉइंट, जो परम नियंता है, जो छोटे मोटे कंट्रोलर का भी कंट्रोलर है वो भगवान हो सकता है। ये पहली बात है यहां पर, जो परम नियंता हो वह भगवान हो सकता है। अब दूसरा पॉइंट, जो सभी वस्तु का स्रोत हो वह भगवान हो सकता है। सभी वस्तु का स्रोत अर्थात आपका स्रोत कौन है, यदि आपको पूछा जाए तो आप कहेंगे मेरे पिताजी, उनका स्रोत उनके पिताजी, उनका उद्गम बिंदु उनके पिताजी, उनका स्रोत उनके पिताजी, वैसे करते करते एंड जा पर हो जाए वो भगवान हो सकते हैं। यह है दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट, जो पूर्ण है वह भगवान हो सकते हैं। चौथा पॉइंट, जो सब समय सब जगह पर उपस्थित रह सकते हैं वह भगवान हो सकते हैं। नहीं तो आप देखिए कि यदि कोई भारत में भगवान की भक्ति कर रहा है और उस पर दुख आ गया, वो मरने की स्थिति में है और भगवान को उसको बचाने के लिए आना है, और उसी समय लंदन में भी कोई मर रहा हो, तो भगवान भारत वाले को बचाने के लिए जाएंगे तो लंदन वाला मर जाएगा, और वहां बचाने जाएंगे भारत वाला मर जाएगा। मैं तो दो देश का नाम दिया, वैसे तो हजारों लोग होते हैं। तो भगवान तो वो हो सकते हैं एक समय पर सब जगह पर व्याप्त हो, वे सभी जगह पर एक साथ उपस्थित रह सकते हैं, वह भगवान हो सकते हैं। और पांचवा, वेद व्यास जी के पिताजी का नाम पराशर मुनि था। ये पराशर मुनि भगवान शब्द की डेफिनेशन देते हैं, आप डेफिनेशन के द्वारा भी भगवान कौन है ये जान सकते हैं। जैसे मान लो आपको जानना है, मान लो आप कोई मंदिर में गए और आपको पूछा जाए कि मंदिर का प्रेसिडेंट कौन है, तो आप नहीं जानते हो, परंतु आपको बता जाए कि प्रेसिडेंट ऐसा कपड़ा पहनते हैं, प्रेसिडेंट ऐसे चलते हैं और प्रेसिडेंट ऐसा होता है, तो डेफिनेशन के द्वारा आप पता लगा सकते हो कि प्रेसिडेंट कौन है। वैसे भगवान शब्द की व्याख्या के द्वारा भगवान कौन है ये हम जान सकते हैं। तो पराशर मुनि भगवान शब्द की डेफिनेशन देते हैं, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रीय ज्ञान वैराग्यश्चैव शशणां भग इति गणा। ये तो संस्कृत में हुआ। हिंदी में आपको कहूं कि जिस व्यक्ति में 6 प्रकार के गुण 100% परिपूर्ण मात्रा में हो वही भगवान हो सकता है। वे 6 गुण कौन से हैं, तो कहते हैं सौंदर्य, पहला है सौंदर्य, दूसरा बल, तीसरा धन, चौथा यश, 5वां ज्ञान और 6ठा वैराग्य। जिस व्यक्ति में संपूर्ण सौंदर्य, संपूर्ण बल, संपूर्ण धन, संपूर्ण यश, संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण वैराग्य हो वही भगवान हो सकता है। यह है भगवान शब्द की व्याख्या। इतनी वस्तु जिसमें हो भगवान हो सकता है। अब आप देखिए कि भगवान बनने की योग्यता आपके पास है। पहली योग्यता, वो परम नियंता होने चाहिए, परम कंट्रोलर होने चाहिए। दूसरी, वे सभी वस्तु के स्रोत होने चाहिए। तीसरी, वह पूर्ण होने चाहिए। चौथी, वह सब समय एक ही समय सब जगह पर व्याप्त होने चाहिए। और पांचवी, उनमें 6 प्रकार के गुण परिपूर्ण मात्रा में होने चाहिए, सौंदर्य, बल, धन, यश, ज्ञान और वैराग्य। अब आप बताइए कि ये 5 योग्यता किस में है, कोई जानता है? जानते भी होंगे, परंतु संसार में यदि आप बोलोगे तो प्रमाण चाहिए, प्रूफ चाहिए। कुछ लोग ने कहा कृष्ण में, लेकिन इसके लिए प्रूफ चाहिए, प्रमाण चाहिए, और प्रमाण हमारा और आपका नहीं चलेगा, इसके लिए शास्त्र से प्रमाण चाहिए। तो आप देखिए, वास्तव में ये 5 प्रकार की योग्यता एकमात्र कृष्ण में है। सबसे पहले, भगवान वो हो सकता है जो परम नियंता है, परम कंट्रोलर है। वास्तव में सबसे बड़ा कंट्रोलर, परम नियंता एकमात्र भगवान श्री कृष्ण है। तो कुछ लोग कह सकते हैं ये कृष्ण का भक्त है इसलिए कृष्ण का नाम ले रहा है। मैं नहीं कहता हूं, महाजनोन गतस पंता, बड़े लोगों ने क्या कहा है, और बड़े में तो संसार के प्रथम जीव ब्रह्मा जी को ही ले लीजिए। ब्रह्मा जी का क्या मत है? ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परमम। ईश्वर का अर्थ होता है कंट्रोलर, और परम का अर्थ होता है सबसे बड़ा कंट्रोलर। कहते परम कंट्रोलर यदि कोई है, ईश्वर परम कृष्ण, सबसे बड़ा कंट्रोलर भगवान श्री कृष्ण है, ये ब्रह्मा जी ने कहा। और ये सनातन सत्य बात है, सबसे बड़े कंट्रोलर भगवान श्री कृष्ण, सब के कंट्रोलर, यहां तक यमराज के भी कंट्रोलर भगवान श्री कृष्ण। तो ब्रह्मा जी के द्वारा यह कहा गया है ब्रह्म संहिता में, ईश्वर परम कृष्ण, यह है प्रूफ, यह है सबूत। तत्पश्चात भगवान बनने के लिए दूसरी योग्यता, जो सभी वस्तु के स्रोत हो वही भगवान हो सकते हैं। स्रोत माने आपका स्रोत आपके पिताजी, आपका स्रोत उनके पिताजी। वैसे ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंदम सर्व कारण कारणम। सर्व कारण कारणम, जो सबके कारण है वो है ईश्वर परम कृष्ण, वो है कृष्ण। भगवान कृष्ण ही सबके कारण है, सबके सोर्स है, इसलिए कृष्ण ही भगवान है। आप देखिए, यदि पूछा जाए आपका सोर्स था, आपके पिताजी उनका सोर्स, उनके पिताजी उनका सोर्स, उनके पिताजी, ऐसे करते करते जाएंगे तो अंत में क्या आएगा? कहते हैं मनु और शत्रुपा। मनु और शत्रुपा के पास आकर गाड़ी रुक जाएगी, क्योंकि ये मनुष्यों की उत्पत्ति मनु और शत्रुपा से हुई है। अब ये है शास्त्र का कहना, परंतु साइंस का कहना तो ये है कि मनुष्य की उत्पत्ति बंदरों से हुई। ये भी डार्विन का सिद्धांत, पागल। मैं तो पढ़ा हूं तीसरी कक्षा में, हिस्ट्री में यह आता था पूरा ड्राइंग करके कि यह मनुष्य पहले बंदर था और धीरे धीरे ये बंदर दो पांव पर चलने लगा, फिर धीरे 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 उसके शरीर के बाल चले गए, फिर धीरे धीरे पूंछ भी चली गई, धीरे धीरे सोफिस्टिकेटेड होता गया, फिर धीरे धीरे कपड़े पहनने लगा और आज वह बंदर मनुष्य बन गया। दूसरे शब्द में यह डार्विन हमारे दादा इत्यादि को गाली दे रहा है, तुम्हारे पूर्वज बंदर थे। वास्तव में ऐसा नहीं है। भागवत कहता है मनुष्य की उत्पत्ति मनु और शत्रुपा से हुई। और आप देखिए, हम मनुष्य बोलते हैं ना, ये मनुष्य शब्द कहां से आया? तो कहते मनु से। हम लोग मनु से उत्पन्न हुए इसलिए मनुष्य कहे गए। और कभी कभी मनुष्य को मानुज भी कहा जाता है। मनु का अर्थ होता है मनु महाराज और ज का अर्थ होता है जन्म। जिसका जन्म मनु से हुआ उसे मानुज कहते हैं, मनुष्य कहते हैं। ये मनुष्य की उत्पत्ति वास्तव में मनु महाराज और शत्रुपा से हुई, न कि बंदरों से। वास्तव में आज अमेरिका में इस सिद्धांत को बैंड किया गया है, वहां सिलेबस से निकाल दिया है, परंतु भारत में आज भी घिस रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। यद्यपि शास्त्र भारत के हैं, परंतु ये लोग भारत पर राज कर रहे हैं। तो मनुष्य का स्रोत मनु और शत्रुपा, मनु और शत्रुपा का स्रोत ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के स्रोत विष्णु, और विष्णु के स्रोत बलदेव संकर्षण, संकर्षण से बलदेव, और बलदेव के स्रोत कृष्ण। वैसे सभी के स्रोत कोई है तो वह कृष्ण। तो इस प्रकार दो योग्यता यहां पर पूर्ण हुई। पहली योग्यता भगवान कृष्ण सबके कंट्रोलर है, सबके ईश्वर है। चरितामृत में भी कहा गया है एकले ईश्वर कृष्ण, एक ही ईश्वर है और वह कौन है? कृष्ण। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य जाहे देखे नाचाए ते तैसे करे नृत्य। भगवान कृष्ण जैसे सबको नचाना चाहे वैसे सब लोग कठपुतली की तरह नाचते हैं, परंतु ईश्वर तो एकमात्र कृष्ण है और सबके स्रोत एकमात्र भगवान से कृष्ण। और गीता में भी भगवान कहते हैं अहम बीज प्रद पिता, मैं ही सबका बीज हूं, मैं ही सबका पिता हूं। गतिर भरता हूं, गतिर भरता प्रभु साक्षी, माता धाता पिता मह, ये जो भी है भगवान। कुछ लोग तर्क करते हैं अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले आई, बीज पहले आया कि वृक्ष पहले आया। वास्तव में तर्क करने के लिए ऐसा पूछते हैं, परंतु भगवान ने भगवद गीता में इसका भी सॉल्यूशन दे दिया। कुछ लोग कहते हैं अंडा पहले आया बीज पहले आया, अंडा पहले आया मुर्गी पहले आई, वृक्ष पहले आया बीज पहले आया। भगवान कहते हैं बीज पहले आया, तो वो बीज कहां से आया? कहते अहम बीज प्रद पिता, मैंने प्रदान किया। क्लियर कह दिया, बीज बनाने वाला मैं हूं और बीज से वृक्ष आया। तो इस प्रकार सबके बीज, सबके सोर्स, सबके स्रोत एकमात्र भगवान श्री कृष्ण है। दूसरी योग्यता कृष्ण ने पूर्ण कर दी। अब भगवान बनने के लिए तीसरी योग्यता, वह पूर्ण होने चाहिए। तो उपनिषद कहती है ओम पूर्ण मद पूर्ण मिद पूर्णात पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण एकमात्र भगवान श्री कृष्ण है, पूर्ण उसे कहा जाता है जिससे पूर्ण वस्तु निकाल दिया जाए तब भी वो पूर्ण ही बचे। पूर्ण एव अवशिष्यते, अवशेष जो बचे वह भी पूर्ण ही रहे, उसे पूर्ण कहा जाता है। तो आप देखिए ये जगत भगवान श्री कृष्ण से निकला है, भगवान विष्णु के अनंत कोटि रोम से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। तो ये ब्रह्मांड निकलने के बाद भी ऐसा नहीं कि भगवान बेचारे आधे हो गए, खाली हो गए। भगवान से सब कुछ निकलने के बाद भी भगवान तो पूर्ण ही रहे, कृष्ण पूर्ण ही रहे, इसलिए वास्तव में पूर्ण एकमात्र कृष्ण है। तो यह है तीसरी योग्यता जो कृष्ण ने पूर्ण कर दी। अब चौथी योग्यता, भगवान वह बन सकते हैं जो एक ही समय पर सब जगह पर व्याप्त हो, एक साथ सब जगह पर रह सके, और एक साथ सब जगह पर रहे उसे ब्रह्म कहा जाता है। एक साथ सब जगह पर मात्र ब्रह्म ही रह सकता है, उसे ब्रह्म कहा जाता है। तो ब्रह्म कौन है? तो भगवद गीता में अर्जुन कहते हैं परम ब्रह्म परम नामम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। हे कृष्ण आप परम ब्रह्म हो, ब्रह्म के भी ब्रह्म। तो वास्तव में ब्रह्म का अर्थ है सब जगह पर व्याप्त, कृष्ण ही पर ब्रह्म है, कृष्ण ही एक साथ सब जगह पर रह सकते हैं। तो मानो भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन ये तो तुम कह रहे हो, एक मित्र दूसरे मित्र की बड़ाई प्रशंसा करे ये तो हो सकता है, और कोई कहता है। तब अर्जुन कहते हैं आहु त्वाम ऋषि यह सर्वे, सब ऋषि देवर्षि नारदस्तथा असित देवल व्यास स्वयं चेव ब्रवीषि में। असित देवल व्यास इत्यादि सब ऋषि मुनि इस बात को कहते हैं कि आप पर ब्रह्म हो, आप परम ब्रह्म हो। कृष्ण जो है परम ब्रह्म है, एक साथ सब जगह पर व्याप्त रह सकते हैं। कृष्ण की लीला से आप इस यह देख सकते हैं। और तत्पश्चात भगवान बनने के लिए पांचवी योग्यता कौन सी है? एक डेफिनेशन के ऊपर आधारित होकर आप देखिए, मैं ये जो भगवान की योग्यता को कृष्ण से पूर्ण करते जा रहा हूं तो सब में प्रूफ देते जा रहा हूं, प्रमाण दे रहा हूं। जैसे परम नियंता कौन है तो प्रमाण दिया ब्रह्मा जी का, ईश्वर परम कृष्ण, और सभी वस्तु के स्रोत वह भी ब्रह्मा जी का प्रमाण सर्व कारण कारणम। भगवान पूर्ण है तो उपनिषद प्रमाण। तत्पश्चात भगवान एक साथ सब जगह पर व्याप्त ब्रह्म के रूप में भगवद गीता प्रमाण, और भगवद गीता में अर्जुन और असित देवल व्यास इत्यादि सब ऋषि मुनि प्रमाण। तो ये सब प्रमाण है। अब अंत में पांचवी योग्यता भगवान बनने के लिए पराशर जी कहते हैं कि छह प्रकार के गुण परिपूर्ण मात्रा में हो उसे भगवान कह सकते हैं। तो छह प्रकार के गुण कौन से हैं? सबसे पहला है सौंदर्य। आप देखिए इस संसार में सबसे ज्यादा सौंदर्य किस में है, कौन सुंदर है? कुछ लोग कहेंगे ऐश्वर्या राय, और भी आजकल जो नई हीरोइन होगी उसका नाम लेंगे, परंतु ये वो थर्ड क्लास के सौंदर्य की बात नहीं हो रही है। वास्तविक सुंदरता इसे कहते हैं जो तीनों काल में सुंदर रहे। आज मान लो कोई सुंदर हो सकता है परंतु कल बूढ़े हो जाएंगे तो उसके सामने तक कोई नहीं देखेंगे। वैसे कई लोग पहले सुंदर थे लेकिन आज सुंदर नहीं रहे, और आज कोई सुंदर है तो कल सुंदर नहीं रहेंगे। वास्तविक पूर्ण सुंदरता उसे कही जाती है जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में सुंदर रहे, और तीनों कालों में सुंदर एकमात्र भगवान कृष्ण ही रह सकते हैं। है कोई कृष्ण के अलावा जो तीनों कालों में सुंदर रहे? कृष्ण कभी कुरूप नहीं होते हैं, वे केवल सुंदर ही बने रहते हैं, वे कभी बूढ़े नहीं होते हैं। इस संसार में कितना भी व्यक्ति सुंदर हो, कितना भी क्रीम लगाए, शैम्पू से बाल धोए, मेकअप करे, ब्यूटी पार्लर में जाए, कायाकल्प कराए, लेकिन एक ना एक दिन बूढ़ा हो ही जाता है, सुंदरता चली ही जाती है। परंतु कृष्ण कभी न तो बूढ़े होते हैं न सुंदरता जाती है। आपने कभी देखा कि कृष्ण का ऐसा फोटो जिसमें लंबी लंबी दाढ़ी थी और बड़ी बड़ी मूछें थी? जो अभक्त होते हैं, जो भक्ति नहीं करते हैं, वे भी कभी भूल से ऐसा फोटो नहीं बनाए। आज के पापी भी इस बात को जानते हैं कि कृष्ण कभी बूढ़े नहीं होते, भक्त की बात तो दूर रही, कभी ऐसा फोटो नहीं देखेंगे, क्योंकि कृष्ण कभी बूढ़े नहीं होते हैं, कृष्ण कभी उनकी सुंदरता जाती नहीं है। आप इतना ही समझिए, महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र की भूमि के युद्ध में अर्जुन का रथ जब भगवान कृष्ण चला रहे थे, तब कृष्ण की उम्र 100 साल से ज्यादा थी, 100 साल से एक दिन भी कम नहीं थी। अब आप मुझे बताइए, आज का 100 साल का व्यक्ति कैसा दिखेगा? पहले तो शमशान में होगा, फोटो घर पे फोटो लगाया होगा, ये है, क्योंकि 100 साल कौन जीता है, बाई चांस कोई जी लेता है। और मान लीजिए कोई 100 साल जिसका हो भी गया है, तो या तो बिस्तर में होगा या हॉस्पिटल में होगा। परंतु यहां देखिए, कृष्ण की उम्र 100 साल की, परंतु फिर भी नव यौव नमच नित्य नवीन, 16 साल के दिखते हैं। इसलिए तो कहते हैं भगवान, अमार माधुर्य नित्य नव नव है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मेरा जो माधुर्य है, मेरी जो सुंदरता है, नित्य नवीन। यद्यपि देखा जाए तो भगवान सबसे पुराने हैं, हम सबसे पुराने भगवान हैं, परंतु पुराने होते हुए भी नव यौव नमच सबसे युवान है, सबसे छोटे हैं। ये है सुंदरता, कृष्ण की सुंदरता के बारे में क्या बताए ब्रह्मा जी? कहते हैं कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, जिसको देखकर करोड़ों करोड़ों कामदेव मूर्छित हो जाते हैं, हैं? ये है कृष्ण की सुंदरता, अद्भुत सुंदरता है। अब क्या बताऊं मैं आपको, एक बात मुझे याद आ रही है, कृष्ण इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे कि कृष्ण को देखकर सब लोग लट्टू हो जाते थे। ये अंदर की बात बता रहा हूं आपको, क्योंकि आप सब प्राय भक्त हो, और कृष्ण को देखकर सब लोग, केवल मनुष्य ही नहीं, केवल स्त्रियां नहीं, चाहे पुरुष हो, मनुष्य हो, पशु हो, पेड़ हो, सब लोग। भागवत में वर्णन है कि कृष्ण की बात छोड़ दीजिए, कृष्ण आ रहे हैं, कृष्ण की बंसरी को सुनकर बाम बाहुकृत बाम कपोलो, भागवत में युगल गीत में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि कृष्ण की सुंदरता को देखकर सबसे पहले तो कृष्ण का शरीर ही झुक जाता था, अंग। इतना ही नहीं, जितने भी पुरुष और स्त्रियां थी वह विवल हो जाती थी, और यह सब छोड़िए, पशु लोग कृष्ण को देखकर, ये गाय और बछड़े घास, सुबह सुबह उठकर घास खाते थे, लेकिन कृष्ण को देखकर न तो घास खा सकते थे, न फेंक सकते थे, न निगल सकते थे, न उगल सकते थे। वहां पर सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं चित्रवत, चित्र के समान, एक पिक्चर के समान हो जाता था, सब लोग कृष्ण को देखने लगते, इतनी सुंदरता। कहते कृष्ण की सुंदरता, कृष्ण की बंसरी को देखकर जड़ चैतन्य हो जाता था और चेतन तत्व जड़ हो जाता था। यह नदियों में बहने वाला पानी पत्थर की तरह, पत्थर के समान रुक जाता था, और पत्थर जैसा कठोर पानी की तरह बहने लगता था। आज भी चरण पहाड़ी वृंदावन गोकुल में जाकर देख सकते हैं, यह है कृष्ण की सुंदरता। इसलिए कृष्ण के जो मधुमंगल श्रीदाम इत्यादि सखा है, कृष्ण को कभी कभी गाली देते हैं, अरे सारे, ये ब्रज की गाली है, अरे सारे तू लड़का बना है तो इतने लोगों के नाक में दम करके रख दिया है, किसी को जीने नहीं देता है, कोई ठीक से काम नहीं कर सकता है। कहते अरे सारे लड़का बना है तो इतने लोगों के नाक में दम करके रख दिया है, यदि लड़की बना होता तो लाखों लोग गला काट कर मर गए होते तुझे प्राप्त करने में, तुझे प्राप्त करने में यहां युद्ध हो जाता यदि लड़की बना होता तो। इस भाव प्रदेश की बात है, भक्तों के सुंदर सुंदर भाव है। तो इस प्रकार कृष्ण की अद्भुत सुंदरता है। कृष्ण की सुंदरता को देखने के लिए ब्रह्मा शिव इत्यादि अपने धाम से उतर उतर कर गोकुल में आते थे। आप जानते होंगे कृष्ण के जन्म के बाद शिव जी आए थे एक जोगी का रूप लेकर। सुनना है वो कथा? अब गीता कोर्स में वो कथा कैसे सुनेंगे? ठीक है, थोड़ा रस भी पहना चाहिए, भोजन में सब कुछ होना चाहिए, है रोटी सब्जी दाल भात और साथ साथ में थोड़ा स्वीट भी, स्वीट ले लेते हैं, लेकिन इतना भी स्वीट नहीं लेना चाहिए कि डायबिटीज हो जाए। थोड़ा मिर्ची भी ठीक है। ठीक है, शिव जी आए थे कृष्ण का दर्शन करने के लिए, क्योंकि अब शिव जी तो सुंदरता के पुजारी हैं, सुंदरता को देखने के लिए आए हैं। परंतु शिव जी ने देखा कि मैं इस रूप में जाऊंगा, शिव जी का रूप बहुत भयानक है भाई। ऐसे तो कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा के अवतार है, संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतम हृदयार विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। वैसे तो नम्रता की मूर्ति है, परंतु उनका रूप बहुत खतरनाक है। शमशान की भस्म लगाते हैं लोग, पाउडर लगाते हैं शिवजी, शमशान की भस्म लगाते हैं, मृग चर्म पहनते हैं और आज तक सलून में नहीं गए, जटा इतनी बढ़ाते हैं, हाथ में त्रिशूल, और लोग गले में नेकलेस पहनते हैं तो ये सांप को पहनते हैं, कान में लोग बाली पहनते तो ये बिच्छू को टांगते हैं। शिव जी ने देखा इस रूप में जाऊंगा तो सब लोग डर जाएंगे, तो उसने एक जोगी का रूप लिया, ब्राह्मण का। लेकिन कोई व्यक्ति कितना भी वस्त्र बदले, कितना भी वस्त्र बदले, परंतु उसका जो रूप है पूरा रूप नहीं बदल सकता है। अब आप देखिए कोई वेस्ट इंडीज का कोई काला व्यक्ति हो, अब वो कितना भी प्रयास करे कैसे गोरा होगा, कितना भी मेकअप करे, मेकअप के लेयर कर देगा फिर भी क्या होगा, वो काला है तो काला ही रहेगा। शिव जी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन जोगी के रूप में भी बहुत डेंजर दिख रहे थे। आए घूमते घूमते यशोदा के पास आए, कहा कि यशोदा ने कहा बोलो बाबा क्या चाहिए, भिक्षान दे ही। यशोदा घर से कुछ कच्चा आटा लेकर आई, धन पैसा लेकर आई, कहा बाबा ये रखिए। कहा बाबा आज ये आटा और पैसा लेने नहीं आया है, तो बाबा आपको क्या चाहिए? कहा मुझे आपके लाला का दर्शन करना है, मैंने सुना है कि आपके घर पर लाला का जन्म हुआ है, दर्शन करा दो। यशोदा ने मन में सोचा कि इसको यदि मेरे लाला का दर्शन कराओगी तो बेचारा मेरा यह पुत्र डर जाएगा, क्योंकि नवजात शिशु है ना, इसकी भयानक मूर्ति को देखकर डर जाएगा। कह दिया बाबा आपको जो चाहिए वो मांग लो, परंतु मेरे पुत्र का दर्शन मत नहीं कराऊंगी मैं, जो चाहिए मांग। बाबा ने बहुत प्रयास किया परंतु यशोदा नहीं मानी, अंत में शिवजी नर्वस होकर वहां से निकल गए। परंतु देखिए भगवान के भक्त को भगवान से मिलने की जितनी चाह होती है, उससे करोड़ों गुना भगवान को उनके भक्त से मिलने की चाह होती है। अब देखिए शिवजी जैसे ही वापस लौटे तुरंत कृष्ण रोने लगे। शास्त्र में वर्ण भागवत में नहीं है, भागवत में संक्षिप्त में है, परंतु अन्य पुराणों में बहुत विस्तार से दिया गया है। तुरंत कृष्ण रोने लगे, और हर बार तो कृष्ण को दूध पिला देती थी यशोदा मैया, कुछ खिलौना दे देती थी, शांत हो जाते थे, परंतु इसकी बार अब जो रोने लगे, बहुत प्रयास किया परंतु कृष्ण शांत नहीं हुए। तब कई सारी गोपियां आई और कहा क्या हुआ मैया? तब यशोदा ने कहा लगता है इसे किसी की नजर लग गई है, ग्रह लग गया है, अब खुद एक काला ग्रह जन्म लिया है, इसे कौन सा ग्रह लग सकता है। रूप गोस्वामी, हमारे षड गोस्वामी के जो आचार्य है रूप गोस्वामी, वे अपने ग्रंथ पद्यावली में लिखते हैं एक श्लोक में कि यदि जीवन में सुखी होना है, सुखी मीन्स ये भौतिक सुख प्राप्त करना है, तो कभी ये काला ग्रह के पास मत जाना। यदि आप चाहते हो कि अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सुख में आसक्त होकर जीवन बिताए, धन में आसक्ति रहे, तो ये काले ग्रह के पास कभी मत जाना, और उसमें भी वृंदावन तो कभी मत जाना, नहीं तो ये काला ग्रह है, इतना कड़ा है, पकड़ लेगा तो फिर छोड़ने का नाम नहीं लेता। अन्य अन्य ग्रह तो कुछ नंग पहनकर या पत्थर पहनकर अंगूठी पहनकर चले जाते हैं, परंतु ये काला ग्रह किसी को छोड़ता है? एक तो किसी के हाथ में नहीं आता है। हाँ देखिए, पूतना के हाथ में कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुम चकार निगनंती पूर ग्राम व्रज आदिशु। कंस के द्वारा भेजी गई पूतना, पूतना आई कृष्ण को लेने के लिए, परंतु कृष्ण ने पूतना के सामने तक नहीं देखा, आंखें बंद कर दी। आचार्यगण वहां पर 24 कारण बताते हैं कृष्ण ने आंखें क्यों बंद की। आंखें बंद कर ली, वे पूतना की राक्षसी के पास जाना नहीं चाहते थे, बहुत प्रयास किए पूतना के पास नहीं जाने का, परंतु पूतना ने कृष्ण को पकड़ ही लिया, और पकड़ लिया दूध पिलाने लगी, कृष्ण सारा दूध पी गए, जहर भी पी गए, पूतना के प्राण पीने लगे। अब पूतना कहने लगी छोड़ छोड़ छोड़। वहां विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका में लिखते हैं कि यह है हमारे भगवान का स्वभाव, यह है हमारे कृष्ण का स्वभाव, एक तो किसी के हाथ में नहीं आते हैं, और यदि हाथ में आ गए तो छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं। रूप गोस्वामी कहते हैं कि यदि संसार में सुखी रहना चाहते हो, ये काले ग्रह के पास कभी मत जाना, और उसमें भी वृंदावन में कभी मत जाना, और वृंदावन में यदि चले गए तो यमुना के तट पर कभी मत जाना, और भूल से यमुना के तट पर चले गए, यदि यमुना के तट पर चले गए तो भूल से भी वह श्याम सुंदर कृष्ण के सामने मत देखना। एक बार भी कृष्ण के सामने देख लिया, चाहे वृंदावन में यमुना के तट पर, चाहे राधा गोपीनाथ मंदिर में जाकर, राधा रास बिहारी, राधा गिरधारी, एक बार भी देख लिया तो यह ग्रह ऐसा पकड़ लेगा, ऐसा पकड़ लेगा, फिर संसार का सुख नहीं मिलेगा, भक्ति का सुख मिल सकता है। तो वास्तव में यशोदा मैया सोचने लगी कि ग्रह लगा है, तो मैं ये कह रहा था कि इनका बालक ही सबसे बड़ा ग्रह है। तो सोचा, अब मां को मां का स्वभाव, सोचा कि किसी की नजर लग गई, तो एक गोपी ने कहा कि मैं एक बाबा को जानती हूं जो ग्रह को उतारने में एक्सपर्ट है। तो यशोदा ने कहा जल्दी जल्दी बुलाकर लाओ उनको, ये रो रहा है, इसे शांत करो। तब दो तीन गोपी गई, और नंद गांव में आज भी वह जगह है शिवजी जहां पर पहुंचकर खड़े थे। शिवजी ही नर्वस होकर जा रहे थे, गोपियों ने बुलाया कि बाबा बाबा, यशोदा के पुत्र को कोई ग्रह लग गया है, बहुत रो रहा है, कृपया करके आप आइए ना, वो ग्रह उतार दीजिए ना। तो बाबा तो सोचने लगे, वाह, वास्तव में भगवान की कृपा हुई। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, गीता के सिद्धांत यहां पर प्रकट होते हैं। आप भगवान के सामने एक कदम चलोगे, भगवान 100 कदम चलेंगे। आप देखिए भगवान ने भेजा है। बाबा आए, शिवजी जोगी के रूप में आए, और यशोदा ने कहा ग्रह उतारने के लिए क्या किया जाए। कहा कि आपके पुत्र को मेरे पास लाओ। तो कृष्ण को जैसे ही पलने से उठाकर शिव जी के पास लाया गया। शिव जी ने कृष्ण को देखा, और कृष्ण ने जैसे ही अपने भक्त शिव जी को देखा, कृष्ण 5 घंटे से रो रहे थे, वह शांत हो गए, और शांति नहीं, वे हंसने लगे, प्रसन्न हो गए। बालक हंसने लगा, खुश हो गया। तब बाबा ने कहा यशोदा मैया, अब भगवान के भक्त, कृष्ण भक्त बड़ो चतुर, भगवान के भक्त बहुत चतुर होते हैं। कहा यशोदा मैया, तुम चाहती हो कि तुम्हारा लड़का जीवन भर इस प्रकार हंसता रहे? कौन मां नहीं चाहेगी हमारा बेटा रोए? यशोदा मैया कहती है, हां मैं चाहती हूं जीवन भर इस प्रकार हंसे, कभी न रोए। तब वो बाबा कहते हैं शिव जी कि हमारे जटा में ऐसा जादू है, यदि आपके लड़के का पांव चरण मेरी जटा में स्पर्श कर दोगे, जीवन में कभी नहीं रोएगा, इसी प्रकार प्रसन्न हो जाएगा। यशोदा ने कहा जल्दी जल्दी लाओ कृष्ण को, और कृष्ण के छोटे छोटे चरण थे, उस चरण को उठाकर शिव जी की जटा में रखा। शिव जी तो खुशी के मारे पागल हो गए, वे तो नाचने लगे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे। शिव जी प्रसन्न हो गए। शिव जी मन में इतना ही सोच रहे थे कि आज तक मेरे जटा से निकलने वाली गंगा जो तीनों लोगों को पवित्र करती है, ये गंगा जो है मेरी जटा से चली है, और ये गंगा क्या है? ये गंगा भगवान श्री कृष्ण का शरणदग जल, कृष्ण से, कृष्ण के चरण से निकल स्पर्श हुआ जल मेरे सिर पर आया, हा? तो मैं तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गया, फेमस हो गया। आज साक्षात कृष्ण के चरण मेरे सिर पर आए हैं, आज तो मैं धन्याति धन्य हो गया। इस प्रकार मेरे कहने का तात्पर्य यह है, भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत सुंदरता। आप देखिए, शिव जी का कृष्ण के पास आना यह बहुत बड़ी बात है। शिव जी जो कामदेव को भस्मीभूत कर दिए थे, साक्षात कामदेव शिव जी के पास आया था और उसको जलाकर राख कर दिया। कामदेव भी जिसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता के पीछे ये लट्टू हो गए। एक बार नहीं, बार बार आते थे। आप गोपेश्वर महादेव वृंदावन याद कीजिए, वो वंशीवट जहां से खड़े रहकर भगवान ने वंशी बजाई, सभी गोपियां आई, शिव जी भी आए, उनकी भी इच्छा हुई मैं भी रासलीला में भाग लूं। लेकिन कहा कि रासलीला में केवल गोपी भाग ले सकती हैं। शिव जी बन गए गोपी, गोपी का रूप धारण कर लिए। कृष्ण की सुंदरता को देखने के लिए शिव जी आते हैं। इसका अर्थ है कि बड़े बड़े कामदेव जिसको मोहित नहीं कर पाए, उसे कृष्ण की सुंदरता ने मोहित कर दिया। ये है भगवान की सुंदरता, कृष्ण की सुंदरता अद्भुत है, कृष्ण से और कोई सुंदर नहीं है। आप बताइए, कोई दिख रहा है आपको? यदि आपको कोई दिख रहा है तो कल से उनकी भक्ति करेंगे। हम तो परम सत्य की भक्ति करना चाहते हैं, और यदि आपको कोई नहीं दिख रहा है तो फिर आपको कृष्ण की भक्ति करनी ही होगी, मानना ही होगा। यह है पहली बात, कृष्ण में संपूर्ण सौंदर्य। तत्पश्चात पराशर जी के अनुसार भगवान शब्द की व्याख्या करते हुए कहते हैं, ऐश्वर्य से समग्रस्य वीर्यस्य, वीर्य का अर्थ होता है बल, जिसमें संपूर्ण बल हो, संपूर्ण शक्ति हो, वही भगवान हो सकता है। अब आप देखिए, संपूर्ण बल संपूर्ण शक्ति किसमें है? एकमात्र कृष्ण में है, संपूर्ण शक्ति कृष्ण में है। कृष्ण ही बलम बलवता चाहम, सबसे बलशाली। आप देखिए, संसार में जितने भी देवी देवता हैं, वे अपना रक्षण करने के लिए कुछ लोग त्रिशूल रखते हैं, कुछ लोग तलवार रखते हैं, कुछ लोग भाला रखते हैं, कुछ ना कुछ अपना रक्षण करने के लिए रखते हैं, परंतु कृष्ण अपने हाथ में कुछ नहीं रखते हैं, कोई वस्तु नहीं। यद्यपि कृष्ण के ऊपर बहुत दुर्घटना, मारने के लिए बहुत असुर आते थे, कोई शस्त्र नहीं। आप देखिए, कृष्ण लीला में कभी शस्त्र नहीं उठाया, किसी को घुमा घुमा कर, किसी को हाथ से, किसी को पांव से, किसी को मुक्का मार के मार डाला। इसे कहते हैं बल। और बल की क्या बात की जाए, कृष्ण 6 दिन के थे, 18 किलोमीटर लंबी चौड़ी राक्षसी पूतना आई थी कृष्ण को मारने के लिए, कालकुट नाम का विष लगाकर, परंतु 6 दिन के बालक ने पूतना का वध कर दिया। बताइए, है किसी में इतनी शक्ति? किसी में नहीं। और कृष्ण की शक्ति तो वहां देखने मिलती है जब वे 5 साल के थे और ब्रज वृंदावन की रक्षा करने के लिए उन्होंने गोवर्धन धारण किया। अपने एक हाथ की एक कानी उंगली पर इतने बड़े पहाड़ को भगवान श्री कृष्ण ने धारण कर लिया। बताइए, किसमें इतनी शक्ति है, किसमें इतना बल है? हमारे गुरु महाराज कहते हैं, आजकल के लोग अपने आप को भगवान मानते हैं, ये गोवर्धन की बात छोड़ दीजिए, 10 क्विंटल की बोरी रख दीजिए उसके सिर पर, 2 घंटे में बैठ जाएंगे और कहते हैं हम भगवान हैं, आई एम गॉड। भगवान एकमात्र कृष्ण है। और एक उंगली पर गोवर्धन धारण किया, वह भी 7 दिन 7 रात के लिए, इसे बल कहा जाता है। तो इस प्रकार बल एकमात्र भगवान श्री कृष्ण में है, और भी बहुत सारे पराक्रम कृष्ण के द्वारा। यदि कृष्ण के बल के ऊपर कथा शुरू की जाए तो ये पूरी रात निकल जाएगी। शास्त्र में एक से एक कथाएं भरी हुई है किस प्रकार कृष्ण ने अपने बल से सबको पराजित किया। तो ये है कृष्ण का सबसे ज्यादा बल, यदि किसी में है तो वह है कृष्ण में। और क्या बताए, कुछ लोग ज्यादा से ज्यादा देवताओं का नाम ले सकते हैं, कहते ये देवता में बल है, परंतु देवताओं के ऊपर जब आपत्ति आती है तब कृष्ण के पास जाते हैं। कभी सुना है भागवत रामायण, रामायण के प्रारंभ में ही जब ये पृथ्वी पापों से भारी हो गई तब ये ब्रह्मा जी के पास गई, मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। शिव जी ने भी कहा हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसके लिए तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। प्रेम से प्रकट होने वाले हरि कृष्ण ही कुछ सब कुछ कर सकते हैं। ये सभी 33 करोड़ देवी देवता अपनी रक्षा करने के लिए कृष्ण के पास गए, और कृष्ण अवतार में भी ये सब लोग गए थे। देवताओं के ऊपर जब आपत्ति आती है तब कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं। इससे साफ साफ पता चलता है कि कृष्ण जो है सर्वशक्तिमान है, सबसे ज्यादा बल कृष्ण में। तत्पश्चात भगवान बनने के लिए तीसरी योग्यता वह है धन। जिसके पास परिपूर्ण मात्रा में धन हो उसे भगवान कहा जाता है, परिपूर्ण मात्रा में। कुछ लोग कहेंगे ये धीरूभाई अंबानी के लड़के या बिल गेट्स इत्यादि। वास्तव में यहां धन का अर्थ होता है तीनों काल में उसके पास धन रहना चाहिए। और ये संसार वालों की स्थिति क्या है, धन है परंतु या तो धन उसके हाथों से निकल जाएगा, कोई लेकर उठ जाएगा, या तो वह धन को छोड़कर चले जाएंगे। परंतु भगवान के पास जो धन है, था, है और फ्यूचर में रहेगा, अद्भुत धन कृष्ण के पास। अब उनके धन की क्या बात बताई जाए, ब्रह्मा जी यहां तक कह दिए कि संसार में सब लोग लक्ष्मी के पीछे पागल है, है कि नहीं, सब लोग लक्ष्मी की आरती, लक्ष्मी की पूजा, लक्ष्मी घर पर आए, लक्ष्मी को सब लोग चाहते, नारायण को कोई नहीं चाहता है, तत्वों को कोई नहीं जानता है। लोग चाहते लक्ष्मी आए, लक्ष्मी आए, परंतु लक्ष्मी आज की नारी जैसी थोड़ी ना है, कहीं भी किसी के घर चली जाएगी। लक्ष्मी जो है पतिव्रता नारी है, अपने पति को छोड़कर कभी नहीं जाती। और मानो लक्ष्मी की पूजा सेवा मेहनत करके यदि आपके घर पर आ भी गई तो ज्यादा दिन टिकेगी नहीं, तब क्या किया जाए टिकाने के लिए। टिकाने के लिए एक बहुत उत्तम रास्ता है, नारायण को बुलाइए। नारायण यदि आपके घर पर आ गए तो लक्ष्मी ऑटोमेटिक आएगी, पतिव्रता नारी है, अपने पति के पीछे पीछे चलने वाली। नारायण को घर पर बुलाए, लक्ष्मी आएगी। और नारायण को लाने का अर्थ है कृष्ण को लाना, और कृष्ण को लाने का अर्थ है महामंत्र को लाना, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे हरे। इस संसार में प्रायः सब लोग लक्ष्मी को चाहते हैं, लक्ष्मी के पीछे पागल है। ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसी एक नहीं, लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम सेव्य मानम, ऐसी करोड़ों करोड़ों लक्ष्मी कृष्ण की सेवा करने के लिए लाइन में खड़ी है, कब हमारा मौका आए। सहस्त्र लक्ष्मी, ये है कृष्ण का ऐश्वर्य, ये है कृष्ण का धन। अरे वे जिस घर पे रहते थे वे नगरी ही, पूरा नगर द्वारका नगर सोने से बना था, गोल्ड की नगरी थी। और एक नहीं, कृष्ण की 16,108 पत्नी थी, और सबके लिए अलग अलग महल, और एक एक पत्नी के 10-10 पुत्र और एक एक पुत्री, सभी बच्चों के लिए अलग अलग कमरे। आप देखिए है इतना सामर्थ्य। कुछ लोग कहते हैं कृष्ण ने इतना विवाह क्यों किया, आप भी करो, यदि आप इतना खरीद सकते हो, सोने की नगरी बना सकते हो, आप भी कीजिए। एक एक का ठिकाना नहीं है, है एक को प्रसन्न नहीं रख सकते हैं, और बात करते हैं 16,108 की। परंतु भगवान 16,108 को प्रसन्न रखते थे, और उनकी पत्नियों की उनका जो महल बना था वो महलों की दीवार जो थी चिंतामणि और पारसमणि से बनी हुई थी, शास्त्र में वर्णन है, ये कॉन्क्रीट और सीमेंट से नहीं। भगवान की पत्नियों को कृष्ण को कभी ऐसा नहीं कहना पड़ता था कि आज मेरे लिए एक बनारसी साड़ी लेकर आना है, कभी कहने की जरूरत नहीं। चिंतामणि की दीवार अर्थात चिंतन करने मात्र से वस्तु प्रकट हो जाए, बनारसी साड़ी विचार करने से प्रकट हो जाए, और स्टव और गैस शुरू करने की जरूरत नहीं, जो भी भोजन बोलो सामने हाजिर। अब आप बताइए कितने प्रसन्न रहते हैं, माताएं तो खुश हो गई, यदि ऐसा हो जाए तो झंझट खत्म। ऐसा पति प्राप्त हो जाए तो सब टेंशन से मुक्त। यहां तो बजाय बिचारी इतनी मेहनत करती हैं, सेवा करती हैं पति की, फिर भी पति उनकी इच्छा को पूर्ण नहीं करते हैं। वास्तव में वास्तविक पति तो कृष्ण ही है ना। तो इस प्रकार ही भगवान का ऐश्वर्य चिंतामणि और पारसमणि से दीवारें बनी, सब लोग प्रसन्न रहते थे। यह है भगवान का धन, अक्षय धन भगवान के पास था। रामायण में तो कहा गया है दशरथ धन देखी धनद ल जाहिं। भगवान श्री रामचंद्र का और कृष्ण के पास धन को देकर, धन संपत्ति को देकर धनज, धनद का अर्थ होता है कुबेर। कुबेर जी जब भगवान के धन के सामने देखते थे तो लज्जित हो जाते थे, शर्मा जाते थे, अरे बाप रे बाप, मेरे पास बैंक बैलेंस अकाउंट में बैंक में इतना धन नहीं है जितना धन एक कृष्ण के पास है, एक राम के पास। धनद ल जाय, इतना तो धन था भगवान के पास, अद्भुत अक्षय धन। और ये धन कभी समाप्त नहीं होने वाला, अक्षय जैसे कहा जाए। आज का धन तो आता है चला जाता है, आता सबके पास है परंतु टिकता नहीं है, परंतु भगवान के पास अक्षय धन है। तो इस प्रकार संपूर्ण धन कृष्ण के पास है, इसमें किसी को कोई डाउट है? डाउट है तो आप हाथ ऊपर करके पूछ सकते हैं, और यदि नहीं है तो फिर आपको मानना ही होगा कि कृष्ण भगवान। अब दो चीज है, तीसरी चीज की बात यहां नहीं होगी। तो मैंने यहां पर कृष्ण के बारे में बहुत कुछ बताया, यदि डाउट है, यदि कृष्ण से श्रेष्ठ कोई लगता है तो आप बताइए, लेकिन बताते समय याद रखिए जैसे मैं प्रमाण देते देते श्लोक के साथ बता रहा हूं वैसे आपको प्रमाण देना होगा, क्योंकि बिना प्रमाण के बात नहीं चलेगी। तो आप कह सकते हो मेरा मानना है कि वो शक्तिशाली, आपके मानने से कुछ नहीं होता है। शास्त्र में क्या लिखा है, श्रीमद भागवत प्रमाण ममलम, ये शास्त्र जो है परम प्रमाण है, और वास्तव में मेरे मानने से भी कुछ नहीं होता है। शास्त्र जो कहता है वही निचोड़ होता है, वही सत्य होता है, क्योंकि शास्त्र को मां कहा गया है। जैसे पिता को, पिता कौन है ये जानने के लिए आप गांव में भटकोगे तो कभी नहीं पता चलेगा, आप रास्ते में सबको पूछते रहो मेरा पिता कौन, मेरा पिता कौन, कौन कौन बता पाए। लेकिन अपनी मां के पास जाओ तुरंत बता देगी ये तेरा पिता है। वैसे भगवान कौन, भगवान कौन, भगवान कैसे, दुनिया में किसी के भी पास जाओ सब लोग अपने अपने मन से बताएंगे। कुछ लोग कहेंगे निराकार, कुछ लोग कहेंगे ज्योति, कुछ लोग कहेंगे ये बाबा भगवान है। शास्त्र को पूछिए, शास्त्र तुरंत बताएगा भगवान कौन है। और मैं आपके सामने शास्त्र रख रहा हूं इसलिए इतना बड़ा स्क्रीन लगाया गया है, शास्त्र प्रमाण है। तत्पश्चात पराशर जी कहते हैं यश, जिसमें संपूर्ण यश हो उसे भगवान कह सकते हैं। यश का अर्थ होता है फेम, फेमस हो जाना। तो आप कहते हैं आज तो सचिन तेंदुलकर फेमस हैं, और पेपर में आया है क्रिकेट का भगवान। परंतु आप देखिए यहां पर जो यश की बात हो रही है, ये यश तीनों काल में यश होना चाहिए। हो सकता है सचिन तेंदुलकर का आज यश है परंतु कल बूढ़ा हो जाएगा, कोई पूछेगा भी नहीं उसे। ऐसा ही यश पूर्व में भूतकाल में सुनील गावस्कर, कपिल देव इत्यादि का था, परंतु आज कोई पूछ रहा है उसे? कोई नहीं। गांधी जी का कितना यश था, पेपरों में भर भर कर उनके फोटो, उनके लेख आते थे, लेकिन आज गांधी को कोई पूछता भी नहीं है। आज गांधी जी का स्थान केवल भारत की एक नोट में, रिजर्व बैंक की नोट में रहा है, वो भी थोड़े दिन में निकल जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है। भूल गए बेचारे गांधी जी को, इतना समर्पण भावना। तो ये लोगों का यश था परंतु आज नहीं रहा, और आज जिसका है उसका कल नहीं रहेगा। वास्तविक यश, पूर्ण यश उसे कहते हैं जो भूत, भविष्य और वर्तमान में रहे, और ऐसा यश एकमात्र कृष्ण का है। करोड़ों करोड़ों वर्ष पहले कृष्ण का यश नाम था, आज है और भविष्य में भी रहेगा। और वास्तव में यश उसका होता है जो अच्छा काम करता है, परंतु देखिए पूर्ण यश उसे कहा जाता है जो बुरे से बुरा काम करे फिर भी उसका नाम हो जाए। आप देखिए कृष्ण बुरे से बुरा काम, इस संसार में सबसे बुरा बुरा काम क्या है? चोरी करना। लेकिन कृष्ण बुरे से बुरा काम, चोरी भी करते हैं तो लोग माखन चोर करके उसकी पूजा करते हैं, गाना गाते हैं, इसे कहते हैं यश। आज आप चोरी करो किसी के घर पर, डंडे मिलेंगे, जेल में जाना होगा। यश मिलेगा? यश नहीं मिलेगा, डंडे मिलेंगे। लेकिन भगवान उसे कहते हैं जो बुरा काम भी करते हैं तब उसका यश मिले। अब देखिए जरासंघ के साथ युद्ध करने में, युद्ध करते करते रणभूमि को छोड़कर भाग गए। अब रणभूमि को छोड़कर भागना ये कायर की निशानी है, कायर कहा जाता है। परंतु कृष्ण रणभूमि को छोड़कर भागे तो रणछोड़ राय करके द्वारका में पूजा होती है, यश बन गया। ये है संपूर्ण यश, तीनों लोक में जिसका यश प्रसिद्ध है ये है कृष्ण। कृष्ण संपूर्ण यशवान है। तत्पश्चात पांचवा है ज्ञान। जिसमें संपूर्ण ज्ञान हो वो भगवान हो सकते हैं, और संपूर्ण ज्ञान एकमात्र भगवान श्री कृष्ण में है। जैसे भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान सैंपल आपके सामने भगवद गीता। भगवान श्री कृष्ण ने यह भगवद गीता को बोलने में मात्र 45 मिनट लगा था। 45 मिनट में कृष्ण ने अर्जुन को पूरी भगवद गीता समझा दी, कह दी, और अर्जुन समझ भी गया, कन्विंस हो गया। आप जानते हैं गीता में सबसे पहले अर्जुन कह रहा था प्रथम अध्याय दूसरे अध्याय में, गुरुन हत्वा ही महानुभावान श्रेयं भोक्तुं भैक्षमीह अपि अलोके। हे कृष्ण, मैं मेरे गुरु को नहीं मारूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, अपना शस्त्र छोड़ दिया, मुंह सूख गया, रोंगटे खड़े हो गए, मूर्छित अवस्था होने लगी और अर्जुन बैठ गया। मैं भीख मांगकर मेरा जीवन बिता लूंगा परंतु मैं युद्ध नहीं करूंगा। फिर कृष्ण ने भगवद गीता शुरू की अशोच्यानंद से, और भगवद गीता को अंत करते करते सर्वधर्मान 45 मिनट लगा। 45 मिनट अर्जुन को प्रवचन सुनाया, 45 मिनट के बाद अर्जुन खड़ा हुआ हाथ में बाण लेकर, बताओ कृष्ण किसको मारना है। यह है कृष्ण का ज्ञान, कृष्ण का उपदेश। 45 मिनट में गीता का ज्ञान भी दे दिया और सामने वाले को कन्विंस कर दिया। और हमारी स्थिति, उस पूरी भगवद गीता के एक श्लोक को बोलने में एक श्लोक भी 45 मिनट में समझा नहीं पाते हैं। 45 दिन से तो तैयारी होती है, प्रिपरेशन होती है, और फिर बाद में बैठकर बोलना शुरू करते हैं, आधा तो भूल जाते हैं, उसमें कोई ठिकाना नहीं रहता है, सामने वाला समझ नहीं सकता है एक श्लोक की बात। बड़े बड़े विद्वानों को इस भगवद गीता के 700 श्लोक में से एक श्लोक को समझने में पूरा जीवन निकल जाता है, परंतु कृष्ण, ये है कृष्ण का ज्ञान, ये है ज्ञान की परिसीमा। इस संसार में जितने लोगों के पास ज्ञान है ये सभी ज्ञान भगवान कृष्ण से आता है। गीता में भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम रिरिसन्निविष्टो मतस्मृति ज्ञानम अपोहनम च। मैं ही सबको ज्ञान देता हूं, मैं ही सबके हृदय में, ईश्वर सर्वभूतानां हृदि दिशे, सबके हृदय में बैठकर मैं ही सबको स्मृति और विस्मृति देता हूं। और भगवान सब जीवों के बारे में जानते हैं, परम ज्ञान वेदाहम समतीतानी वर्तमानानी च अर्जुन भविष्यानी च भूतानी माम तु वेदन कश्चन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन मैं अकेला हूं और अकेला होकर संसार में रहने वाले सभी जीवों के भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में जानता हूं, परंतु दुख की बात यह है कि संसार के सब लोग मिलकर मुझे अकेले के बारे में नहीं जान सकते हैं। दुर्भाग्य है। अकेले होकर वेद अहम, अहम में सब कुछ, भूत भविष्य वर्तमान, इसे कहा जाता है ज्ञानी। और हमारा ज्ञानी, हम अपने आप को ज्ञानी मानते हैं। मैं कह रहा था परसों दोपहर को कौन सी सब्जी खाई ये याद नहीं होगा, याद है किसी को? और कहते हम ज्ञानी हैं, पंडित हैं। वास्तव में ज्ञानी एकमात्र कृष्ण है। तो इस प्रकार संपूर्ण ज्ञान कृष्ण में है, और तत्पश्चात वैराग्य। ये सब कुछ किसी में हो सकता है, परंतु वैराग्य तो एकमात्र भगवान में। वैराग्य का अर्थ होता है कोई आसक्ति नहीं, तुरंत अपने सबसे प्रिय वस्तु को भी तुरंत छोड़ देना, इसे वैराग्य कहा जाता है। आप देखिए गोकुल में कृष्ण से प्रेम करने वाली कितनी गोपियां थी, लेकिन जैसे ही अक्रूर जी आए लेने के लिए, कृष्ण तुरंत छोड़कर चले गए। और वह गोकुल में वास्तविक प्रेम करने वाली गोपियां, और यहां पर संसार में एक पति देव को कहा जाता है कि चलो हमारे साथ यात्रा में मायापुर, तो अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर 10 दिन भी नहीं जा सकता है, और यदि चला भी गया तो फोन करता है कैसे हो, ठीक हो, आपके बिना रह नहीं सकता हूं, नींद नहीं आती है, ये है वो है, चलता है। सब जानते ही होंगे। वास्तव में देखा जाए तो वो पत्नी और बच्चे केवल स्वार्थ के कारण प्रेम करते हैं, वास्तविक प्रेम नहीं है। जो वास्तविक प्रेम नहीं है उसे भी संसार का मनुष्य छोड़ नहीं सकता है। वहां तो गोपियां सच्चा प्रेम करने वाली थी, उसे तुरंत छोड़ दिया, इसे वैराग्य कहा जाता है। और वहां राम अवतार में भगवान श्री रामचंद्र को राज तिलक करना था, राजा बनना था, राजा दशरथ ने आदेश दे दिया था, सुबह भोर में 6-7 बजे राजा बनना था, और रात को 3 बजे भगवान श्री रामचंद्र को पता चला कि मेरी माँ, मेरी सौतेली माँ कैकेयी ने मेरे पिता से 2 वर मांगे हैं, भरत को राजा बनाना और मुझे 14 साल के लिए वनवास। भगवान श्री रामचंद्र ने देखा कि मेरे पिताजी धर्म संकट में फंसे हैं। तापस्वेश विशेष उदासी, तापस्वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम वनवासी, 14 बरिस राम वनवासी। तापस वेश विशेष उदासी, कैकेयी ने मांगा था कि तुम्हारे सबसे प्रिय पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र राम को 14 वर्ष के लिए वनवास में भेज दो। और राजा दशरथ एक और पुत्र का प्रेम, अपना प्राण से प्रिय पुत्र को छोड़ नहीं सकते हैं, और एक और उनका प्रण, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई प्रवचन न जाई। एक और रघुकुल की रीत थी, राजा हरिश्चंद्र रघु जिस कुल में हो गए, एक और उनका वचन था, एक और पुत्र का प्रेम था, धर्म संकट में फंसे थे। और उस समय भगवान श्री रामचंद्र राजा बनने वाले थे, लाखों लाख दास दासी, नौकर चाकर, रजवाड़े, ये सबको तिलांजलि देकर भगवान श्री रामचंद्र तपस्वियों के वेश में 14 साल के लिए वन में निकल गए। इसे कहते हैं वैराग्य। और आज 2 भाई अपनी संपत्ति का बंटवारा करते हैं, थोड़ा कम ज्यादा हो गया तो झगड़ा होने लगता है कि मुझे कम मिला, मुझे ज्यादा मिला है, वैराग्य की बूंद भी नहीं है। और इसे कहते हैं वैराग्य, भगवान का वैराग्य। सब कुछ छोड़ दिया अपने भाई के लिए, यद्यपि चाहते तो खुद राजा बन सकते थे, क्योंकि ये परंपरा है किसी भी राजा का ज्येष्ठ पुत्र ही राजा होता है, परंतु भगवान का वैराग्य तो देखिए, सब कुछ छोड़कर चले गए। ये है वैराग्य, मात्र भगवान में ही हो सकता है, अन्य कोई नहीं कर सकता है इसे। तात्पर्य यह है, सौंदर्य, बल, धन, यश ज्ञान और वैराग्य एकमात्र कृष्ण में है, इसलिए कृष्ण ही भगवान है। हरे कृष्णा हरे ना हरे हरे। अब किसी को डाउट है तो बता सकते हैं, तो ये फोटो निकाल कर आप जो कहते हैं वो रख लेंगे, लेकिन उनमें यह सब होना चाहिए। है किसी को डाउट? नहीं तो मैं थोड़ा आगे बढ़ूं, बहुत कुछ बाकी है। कितना बजा टाइम क्या आज? मैं घड़ी भूल गया हूं, 10 हो गया, 9:30, 10 मिनट ले सकता हूं, क्योंकि बहुत कुछ बाकी है। अब थोड़ा तेज गति से राजधानी एक्सप्रेस चलेगी, आप देखिए सोना मत एक जबकि मारेंगे तो कितने अध्याय निकल जाएंगे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। तो यह सब प्रमाणों से यह प्रूढ़ होता है, यह साबित होता है कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। क्यों? क्योंकि कृष्ण ऊपर बताई गई सभी योग्यताओं को पूर्ण करते हैं। दूसरी बात, कृष्ण भगवान है क्योंकि भगवत गीता इस बात की पुष्टि करती है। भगवत गीता में कहा गया है, भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभो मत सर्व प्रवर्तते इति मत्वा वजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। मैं ही सबका प्रभु हूं, ईश्वर हूं। तीसरा पॉइंट, कृष्ण ही भगवान है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी तो कहते हैं, शिव जी भी कहते हैं। आप देखिए बड़े लोगों का मत हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। शिव जी का मत क्या है? एक बार पार्वती ने शिव जी को पूछा, प्रभु आज तक मुझे ऐसा लगता था कि आप भगवान हो, परंतु आप भी माला जपते हो तो लगता है और कोई भगवान होगा, नहीं तो आप भगवान होते तो आप क्यों माला जपते? भगवान थोड़ी ना किसी की माला जपते हैं। तो बताइए इस संसार में भगवान कौन है, सबसे बड़ी आराधना किसकी है? तब शिव जी कहते हैं, आराधना नाम अपि सर्वेशाम विष्णु आराधना परम, तस्मात् परतरम देवी तदिया नाम समर्चनम। इस संसार में सभी आराधनाओं में सबसे श्रेष्ठ आराधना भगवान श्री कृष्ण की है। कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ ईश्वर है, ये शिव जी का मत है, शिव जी का कहना है। और तत्पश्चात शिव जी का ही नहीं, कई वेद पुराण शास्त्र उपनिषद पुराणों में भी कहा गया है, भूतेषु वस्ते सो अंत वसंति यत्र च तानि यत् धाता विधाताम जगताम वासुदेवस्ततः प्रभु। इस संसार में सभी जीवों के हृदय में रहने वाला, संसार के कण कण में रहने वाला, सबका धाता विधाता एकमात्र वासुदेव, वसुदेव का सुत वसुदेव नंदन वासुदेव कृष्ण ही है। ये विष्णु पुराण में कहा गया है, उपनिषद में भी कहा गया है, कृषि भू वाचक अणच निवृत्ति वाचक तयर एक्यो पर ब्रह्म कृष्ण अपि अभिधीयते। पर ब्रह्म यदि कोई है तो एकमात्र कृष्ण है। और भागवत में सभी शास्त्र वेद लिखने के बाद अंत में वेद व्यास जी भागवत लिखते हैं, और उस भागवत में क्लियर स्टेटमेंट देते हैं, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण जो है स्वयं भगवान है, इसलिए कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण ही सबके नियंता है, कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो यहां तक क्लियर हुआ। तो अब आगे आपका प्रश्न हो सकता है कि आप कहते हो कृष्ण ही भगवान है, तो और गणपति शिव जी दुर्गा जी सूर्य चंद्र ये सब कौन है? तो आइए उसके बारे में समझते हैं। कृष्ण भगवान है, और कृष्ण के अलावा अन्य ये जो है शिव जी दुर्गा गणपति इत्यादि ये सब देवता है। देवता की संख्या 33 करोड़ है, 33 कोटि देवी देवताओं की संख्या है, और ये देवता जो है भगवान की नीचे की कैटेगरी में आते हैं। मनुष्य के ऊपर की कैटेगरी, भगवान से नीचे की कैटेगरी। तो देवता 33 करोड़ है, और उस देवताओं में कुछ मुख्य देवता है ब्रह्मा। ब्रह्मा जी देवता है और भगवान ने इस विशेष देवताओं को कुछ सेवा प्रदान की है। ये सब देवता भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा में लगे हैं। ये ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए, प्रकट होकर तपस्या की और तपस्या करके भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया और ज्ञान देकर भगवान ने ब्रह्मा जी को सेवा में लगाया। कौन सी सेवा में? सृष्टि के सर्जन करने में। सर्ग की सृष्टि भगवान ने की, विसर्ग की सृष्टि ब्रह्मा जी ने की। तो ब्रह्मा जी को सृष्टि के सर्जन में लगाया। कुछ लोग कहते ब्रह्मा जी भगवान है, ब्रह्मा जी क्रिएटर है। ब्रह्मा जी क्रिएटर है परंतु ब्रह्मा जी सेकेंड क्रिएटर है। फर्स्ट क्रिएटर सर्ग की सृष्टि भगवान ने की। जैसे मान लो आपको कहा जाए कि आपने जो ये शर्ट पहना है किसने बनाया, तो कोई कहेगा टेलर ने बनाया। तो टेलर ने शर्ट बनाया, ये सत्य बात है, परंतु टेलर के पास कपड़ा ना हो तो शर्ट कैसे बनेगा? तो वास्तविक शर्ट तो वो मिल में बना जहां कपड़ा बन रहा है। वैसे वास्तविक पंच महाभूत ये महत्तत्व, वास्तविक सृष्टि का सर्जन भगवान कृष्ण ने किया, परंतु इसे डिजाइन करने का काम ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने यह सेवा की और ब्रह्मा जी सेवा में लगे हैं। तत्पश्चात है शिव जी। शिव जी को भगवान ने प्रलय का डिपार्टमेंट दिया है कि आपको जो नित्य नैमित्तिक प्रलय करना है। तो शिव जी बहुत खूब प्रलय करते हैं, नटराज तो है ही, त्रांडव नृत्य करते हैं। प्रलय, शिव जी को जब प्रलय करना होता है तो त्रांडव नृत्य, त्रांडव नृत्य का अनुभव आपको कभी होता होगा मंदिर में। कुछ भक्त बहुत आराम से प्रेम से कीर्तन करते हैं तो कुछ लोग त्रांडव शुरू कर देते हैं, बाकी सब भक्तों का नृत्य बंद हो जाता है। तो नृत्य नृत्य में भी अंतर होता है। प्रलय करने में कुछ अलग नृत्य होता है, संकीर्तन में अलग नृत्य होता है। शिव जी सब नृत्य को जानते हैं। कृष्ण के बाद नृत्य को जानने वाला कोई है तो वो है शिव जी। नाचने में नटराज है। कृष्ण को नटनागर कहा गया है और शिव जी को नटराज कहा गया है। तो इस प्रकार शिव जी नाचते हैं और अपने बहुत बड़े त्रिशूल में हम इस ब्रह्मांड को सपोर्ट, ब्रह्मांड को टिकाने के लिए 8 दिग्गज बड़े बड़े हाथी होते हैं। उस 8 हाथियों को अपने त्रिशूल में फंसाकर शिव जी त्रांडव नृत्य करते हैं और इस ब्रह्मांड का प्रलय कर देते हैं। शिव जी का भगवान ने प्रलय का डिपार्टमेंट सौंपा है, ब्रह्मा जी को डिजाइन करने का डिपार्टमेंट सौंपा है। तत्पश्चात सूर्य देवता को प्रकाश देने का डिपार्टमेंट सौंपा है, चंद्र देवता को शीतलता देने का डिपार्टमेंट सौंपा है। चंद्र देवता जो है सभी औषधियों में गुण भरते हैं, तो ये है चंद्रमा। और उसके साथ गणपति जी के बारे में भी जान लेना चाहिए। ये सब हालांकि भगवद्गीता कोर्स में ये सब के बारे में बहुत कुछ बताया जाता है, लेकिन ऑलरेडी हमारे पास केवल 5 दिन है और उसमें भी हम बहुत लेट हैं, इसलिए आपको थोड़ा संक्षिप्त में बता रहा हूं। गणेश जी, गणेश जी जो है, गणेश जी के बारे में जानना आवश्यक है क्योंकि हम लोग महाराष्ट्र में रह रहे हैं, देवा हो देवा, और महाराष्ट्र में प्राय सब लोग गणेश जी को मानते हैं और उसमें भी हम दादर एल्फिस्टन में सिद्धिविनायक बाजू में है। गणेश जी के बारे में जानना आवश्यक है। गणेश, सबसे पहली बात, गणेश जी जो है, गणेश ये किसी का नाम नहीं है, ये पोस्ट है। ये पहला पॉइंट है, गणेश जो है नाम नहीं, किसी का स्पेसिफिक नाम नहीं है, पोस्ट है। इस गणेश की पोस्ट पर कोई भी आ सकता है। जैसे भगवान ने ढूंढकर ब्रह्मा जी को बिठाया सर्जन करने, ढूंढकर शिव जी को बिठाया प्रलय करने के लिए, वैसे ही भगवान ढूंढते हैं कोई योग्य जीव जो इस गणेश की पोस्ट को ठीक से निभाए। तो कोई योग्य जीव को भगवान गणेश जी, गणेश जी का काम है विघ्न देना, विघ्न हरने का काम नहीं, विघ्न के ये देवता है। और गणेश जी को जब हम प्रसन्न करते हैं तो वो विघ्न नहीं देते हैं, ध्यान रखते हैं। तो गणेश जी पोस्ट हैं, और इस बात को और ठीक से समझने के लिए मैं रामायण का एक छोटा सा प्रसंग कहूं, आप समझ जाएंगे कि वास्तव में गणेश जी पोस्ट हैं। यदि कोई कहे कि नहीं गणेश जी नाम है, तो गणेश जी नाम है तो उसका नाम किसने रखा? शिव जी ने, क्योंकि नाम तो पिता ही रखते हैं, माता पिता। तो यदि शिव जी ने नाम नाम रखा तो पुत्र किसके हैं? शिव जी के। तो अब देखिए कि रामायण में शिव जी का जब विवाह हुआ, तो आप सब जानते हैं जब किसी का विवाह विधि होता है तो गणेश स्थापना करते हैं, करते हैं कि नहीं सबके घर पर। तो शिव जी के विवाह में भी गणेश स्थापना हुई थी। अब बताइए शिव जी के विवाह में गणेश जी की स्थापना हुई तो लोग कहते हैं गणेश जी शिव जी के पुत्र हैं, ये बात कैसे संगत होगी? इसका अर्थ है कि गणपति का शिव जी के पुत्र के रूप में जन्म हुआ, उसके पहले भी गणेश जी थे। तो वास्तव में यहां पर यह साबित हुआ कि गणेश जी जो है पोस्ट है। और शिव जी का विवाह हुआ तब उस गणेश की पोस्ट पे और कोई था, और शिव जी का विवाह होने के बाद उसकी पोस्ट पर उनका पुत्र आ गया। इस प्रकार से देखना है। गणेश जी भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त है, और कुछ लोग कहते हैं गणेश जी के यहां अब के जो गणेश जी हैं उनके सिर पर हाथी का मुख है, हाथी का नहीं है। गणेश पुराण में यह वर्णन है, शिव पुराण में भी मैंने पढ़ा है कि जब शिव जी को पता नहीं था, इनका जन्म हो गया था और आकर त्रिशूल मार दिया। बहुत बड़ी कथा आप सब लोग जानते ही हैं, पार्वती ने कहा था ध्यान रखना किसी को आने मत देना। शिव जी ने आकर त्रिशूल मार दिया, सिर कट गया। पार्वती ने आकर बहुत विलाप किया, बहुत रोई। तब शिव जी ने अपने गण को भेजा कि जाओ रास्ते में सबसे पहला व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति मिले उसका सिर लेकर आओ। तब उनके गण गए और सबसे पहले विनायक योनि का मनुष्य मिला। तो विनायक योनि का मनुष्य मिला, उसका सिर काट कर लाए और गणेश जी के सिर पर लगा दी। गणेश जी के सिर पर हाथी का नहीं, विनायक योनि के मनुष्य का सिर है। और आप ये मत समझो मनुष्य की एक ही योनि है, मनुष्य 400,000 प्रकार के हैं। जलजा 900,000, स्थावरा 100,000, विशंति कृमिया रुद्र संख्या नाम, पक्षिणाम 1,000,000, 30,000 पशव, 4,000,000 मानुष। ये मनुष्य जो है 400,000 प्रकार के, मैं आगे गिनाऊंगा ये सब कौन है, आभीर कंक खस यवन म्लेच्छ शबर इत्यादि बहुत सारे प्रकार के मनुष्य हैं। तो गणेश जी के ऊपर जो सिर है, मस्तक है, विनायक योनि का, इसलिए उनका एक नाम विनायक है। नहीं तो पूछिए विनायक नाम कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये विनायक योनि है। और गणेश जी भगवान के परम भक्त हैं। और गणेश जी के विषय में आप सब जानते हो गणेश जी का एक दांत टूटा हुआ है कि नहीं? एक दांत टूटा हुआ है, क्यों कैसे टूटा? आप टीवी में जो दिखाते हैं बच्चों के कार्टून में वो याद मत कीजिए। कुछ लोग उसे स्टैंडर्ड बनाते हैं कि वो ही सत्य है, वो तो कथा रोचक बनाने के लिए, वो सीढ़ी बेचने के लिए सब लोग उसमें गड़बड़ी कर देते हैं। शास्त्र में कहा गया है गणेश जी जो है भागवत लिख रहे थे। आप सब जानते हैं ये भागवत ग्रंथ कहाँ लिखा गया? बद्रीनाथ में, बद्री का आश्रम में। भागवत बोलने वाले वेदव्यास जी थे, एडिटिंग करने वाले जैमिनी ऋषि थे और लिखने वाले गणेश जी थे। तो वेदव्यास जी ने देखा कि गणेश जी लिखने में एक्सपर्ट है, बुलाया गणेश जी आप आइए और भागवत लिखिए, क्योंकि वेदव्यास जी को समाधि में भागवत लिखना था। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, सुध गोस्वामी ये वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से वेदव्यास जी समाधि में बैठकर भागवत लिख रहे थे। तो गणेश जी को बुलाया, कहा कि आपको श्रीमद् भागवत लिखना है। गणेश जी ने कहा मेरी एक शर्त है कि मैं भागवत लिखते लिखते रुकूंगा नहीं, और यदि आप श्लोक बोलते बोलते रुक गए तो मैं छोड़कर चला जाऊंगा, फिर आप किसी को बुला लेना, मैं नहीं लिखूंगा। वेदव्यास जी सोच में पड़ गए, अब एक श्लोक को याद करने में कितना दिन निकल जाता है, ये तो श्लोक की रचना करनी है, और ये गणेश बोल रहा है कि यदि मैं रुक जाऊंगा तो लिखना बंद कर देगा। लेकिन वेदव्यास जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन वेदव्यास ने कहा मेरी एक शर्त है, मैं बोलते बोलते रुकूंगा नहीं, ठीक है ये मैंने माना, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम मानो। क्या? कि मैं जो भी श्लोक बोलूं उसे तुम्हें समझ कर लिखना है। गणेश जी ने कहा ओके, एग्रीमेंट साइन। यहां वेद व्यास जी ने भागवत शुरू किया और गणेश जी लिखते गए, लिखते लिखते लिखते। वेद व्यास जी को जब सोचने का समय चाहिए था तब वे थोड़ा हार्ड श्लोक बता देते थे, कठिन श्लोक, तब गणेश जी सोच में पड़ जाते थे इसका अर्थ क्या होता है क्या होता है। तब तक वेद व्यास जी दूसरा श्लोक सोच लेते थे और यह काम चल रहा था। लेकिन ये लिखते लिखते 18,000 श्लोक लिखने थे ना, तो ये लिखते 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 गणेश जी की जो सिलाई थी, इंक थी, वो खत्म हो गई। सिलाई खत्म हो गई और लिखने में इतना आनंद आ रहा था और वेदव्यास जी से ये शर्त रख के बैठे थे कि बंद नहीं होना है। और भागवत लिखने में, भगवान श्री कृष्ण की कथा लिखने में गणेश जी को इतना आनंद आने लगा, इतना आनंद आने लगा, फिर वो किसी स्टेशनरी दुकान में नहीं गए पेन खरीदने के लिए, वह अपना दांत ही तोड़ दिए और अपने दांत से भागवत को लिखने लगे। और गणेश जी ने अपने दांत से जो भागवत को लिखा है आज भी बद्रीनाथ में उपस्थित है। यदि देखना है तो 18 मई को हमारे साथ चलिए, हम आपको दिखा देंगे, हम जा रहे हैं। आज भी आप देखिए वो पत्थर पर गणेश जी ने पूरा भागवत लिखा है, पूरा भागवत, जैसे आप किताब देखते हो ना वैसे किताब के पेज वहां पर है और उसी के नीचे वेद व्यास जी की गुफा है बद्रीनाथ में, आज भी है, प्रमाण है। गणेश जी भगवान के परम भक्त हैं। और आप देखिए गणेश जी की जब जयदेव जयदेव जय मंगल मूर्ति आरती होती है, मैं तो गणेश भक्तों को कन्विंस करने के लिए बस एक ही पॉइंट पकड़ कर रखता हूं कि आप लोग आरती करते हो जयदेव जयदेव जय मंगल मूर्ति, तो आरती के अंत में आप गाते हो हरे राम 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 हरे, ये तो है ही, महामंत्र गाते हो। और दूसरी बात, आप एक श्लोक गाते हो कायेन वाचा मनसेन्द्रियेर्वा, गाते हैं कि नहीं? अब आप देखिए, अब पकड़ में आ जाएंगे गणेश भक्त कैसे। गणेश जी की आरती, गणेश जी की पूजा, और अंत में क्या गाते हैं, कायेन वाचा मनसेन्द्रियेर्वा। वास्तव में ये भागवत का श्लोक है। जब निमि महाराज ने, राजा जनक ने सनातन धर्म के बारे में, भागवत धर्म के बारे में जिज्ञासा की, तब भगवान ऋषभदेव के 9 पुत्र कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन आविर्होत्र द्रुमिल चमस करभाजन, ये 9 पुत्र को जब पूछा कि सनातन धर्म क्या है, तो उसमें कवि ऋषि ने उत्तर दिया कि सनातन धर्म केवल एक श्लोक पर टिका है, और वह श्लोक क्या है, कायेन वाचा मनसेन्द्रियेर्वा बुद्ध्यात्मनावानुश्रुत स्वभावात् करोति यत् यत् सकलं परस्मे नारायणेति समर्पयेत। इसका अर्थ क्या होता है, कायेन वाचा मनसेन्द्रियेर्वा, काया से, कायेन अर्थात काया से, वाचा अर्थात वाणी से, मनसा अर्थात मन से, इंद्रिय अर्थात शरीर से, अहंकार से, बुद्धि से, करोति यत् यत्, आप जो भी करते हो, ये सकलम, ये सब कुछ नारायणेति, नारायण के लिए, कृष्ण के लिए करो, यही है सबसे बड़ा धर्म। आप ही गाते हो, गणेश भक्त ही गाते हैं, गाते हैं परंतु इसका अर्थ नहीं जानते हैं। आप देखिए, गाते हैं अर्थ नहीं जानते हैं। इसका अर्थ है करोति यत् यत् सकलम परस्मे, सकलम, सकल का अर्थ है सब कुछ, करोति जो भी करते हो, नारायणेति, नारायण को ही अर्पण करो, यही है भक्ति। और ये सत्य है, गणेश जी भी वास्तव में तब तक प्रसन्न नहीं होते हैं जब तक हरे कृष्ण महामंत्र न गाया जाए। हरे कृष्णा हरे। लेकिन आज इस सिद्धांत को कोई नहीं जानता है। आज तो गणेश जी के रूप रंग को ही बदल दिया है। आज के गणेश जी हमारे महाराष्ट्र में हाथ में बैट हैं और क्रिकेट खेल रहे हैं, हेलमेट पहना है। क्या ये है गणेश जी? गणेश जी का रूप ही बिगाड़ दिया है। चतुर्भुज गणेश, ये गणेश वो गणेश, सोए हुए गणेश, गणेश जी। और आज लोग सोचते हैं कि गणेश चतुर्थी मनाएंगे, गणेश उत्सव, गणेश जी को घर पर लाएंगे और लाकर क्या करते हैं, फिल्मों के गाने बजाते हैं। अब देखो तो सही, धर्म के नाम पर पाखंड करते हैं आज लोग, पाप करते हैं। धर्म का मात्र नाम है, अपनी इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं गणेश जी के नाम पर, गणेश जी के नाम पर चंदा एकत्रित करते हैं और फिर शराब पी पी कर नाचते हैं। अब देखिए जहां गणेश जी आए हैं वहां पर ताश खेलते हैं रात भर, जहां पर ताश खेला जा रहा हो, जहां पर फिल्मों के गाने हो, जहां पर शराब पीकर नाच रहे हो, क्या वहां गणेश जी आते हैं कभी? स्वप्न में भी नहीं आते हैं और कहते ये गणेश जी का प्रसाद आप खाइए। वास्तव में ये गणेश जी का प्रसाद नहीं होता है, ऐसी जगह पर गणेश जी नहीं आते हैं, गणेश जी अपने पिता के सैनिकों को भेज देते हैं, रुद्र गणों को, भूत पिशाचों को भेजते हैं और वो प्रसाद गणेश जी का नहीं भूतों का होता है। भूतों के अलावा कुछ नहीं आते हैं वहां, केवल पाखंड और पाप कर रहे हैं। गणेश जी के बारे में समझना चाहिए। आज आप देखिए लोगों में शास्त्र समझने की भावना नहीं है, गणेश जी को भगवान को समझना शास्त्र के आधारित यह सबको समझना चाहिए, लेकिन आज तो भावुकता में आकर बस देखा देखी, ये जा रहा है मैं भी जाऊंगा, ये कर रहा है मैं भी करूंगा। आप देखिए हमारे दादर में सिद्धिविनायक मंदिर, आपने कभी इसका इतिहास जाना है? मंगलवार को हजारों लोग आते हैं विरार से, बोरीवली से, नंगे पांव आते हैं। किसी को पकड़कर पूछिए कि ऐसा क्यों करते हो आप, बोरीवली से यहां नंगे पांव जाओगे क्या मिलेगा? इसका फल शास्त्र में कहीं लिखा है नहीं, बस वो कर रहा है इसलिए मैं भी करूंगा, मेरी बिल्डिंग का जा रहा है इसलिए मैं भी जाऊंगा। अरे वो मूर्ख हो सकता है, हम भी मूर्ख बने? शास्त्र से जानना चाहिए। आप जानते हैं सिद्धि विनायक का इतिहास? ये सिद्धि विनायक मंदिर में एक दिन ऐसा था, एक चिड़िया भी नहीं फरक रही थी, कोई नहीं जाता था। ये उन दिनों की बात है जिन दिन ये अमिताभ जी के का कुली फिल्म आया था, आप जो बुजुर्ग है वह जानते होंगे। आज भी वो कुली फिल्म आप देखोगे तो उस कुली फिल्म के एक शॉट में शूटिंग करते समय अमिताभ जी को कुछ चोट लग गया था और इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था कि उसको तुरंत अर्जेंट यहां से लंदन लेकर गए थे ऑपरेशन के लिए। और उस समय अमिताभ जी की पत्नी जया बच्चन सिद्धिविनायक मंदिर में आई थी, लोगों को पता ना चले इसलिए बुर्का पहनकर आई थी, लेकिन आज की जनता तो कैसे भी करके पता लगा लेगी। अब आप देखिए जया बच्चन जिस दिन से इस मंदिर में आई उस दिन से लाइन लग गई हजारों लोग, क्यों? क्योंकि जया बच्चन आई। क्या यही सार है? धर्म का आधार शास्त्र होना चाहिए न तो भावुकता। मैं ये नहीं कहता हूं गणेश जी के मंदिर में नहीं जाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान जानना चाहिए, तत्व जानना चाहिए, शास्त्र को जानना चाहिए, तब जाकर गणेश जी की कृपा होगी। आज के गणेश भक्त गणेश जी की क्या भक्ति करते हैं, उससे ज्यादा तो हम लोग उसकी भक्ति करते हैं, क्योंकि गणेश जी किससे प्रसन्न होते हैं ये हम जानते हैं, आज के गणेश भक्त नहीं जानते हैं गणेश जी क्या तत्व है, कौन है। तो ये है गणेश जी के बारे में। तत्पश्चात शिव जी के बारे में मैं आपको एक पॉइंट बताना भूल गया, शिव जी को भगवान ने प्रलय का डिपार्टमेंट दिया है। शिव जी के बारे में बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, कुछ लोग कहते हैं शिव जी भगवान है, कुछ लोग कहते हैं शिव जी भगवान से बड़े हैं, इसीलिए भगवान श्री रामचंद्र ने शिवलिंग की स्थापना की। इस मुद्दे को लेकर बहुत चर्चा चल रही कि राम ने शिवलिंग की स्थापना की, शिवलिंग की पूजा की, इसलिए शिव जी राम से बड़े। परंतु एक बार जीवन में एक बार राम ने शिव जी की पूजा कर दी तो क्या राम छोटे हो गए और शिव जी बड़े हो गए? आप देखिए मैं तो एक दृष्टांत देता हूं कि बाप होता है और बेटा होता है, बेटा बाप की सेवा करता है, बाप बेटे की सेवा करता है, दोनों एक दूसरे की सेवा करते हैं ना। परंतु आप विचार करके देखिए कि बाप बेटे की जितनी सेवा करता है बेटा उतना बाप की सेवा नहीं करता है। बच्चे को पढ़ाना, खिलाना पिलाना कपड़े देना ट्यूशन भेजना कितनी सेवा। बड़ा होकर बेटा अपने पिता की उतनी सेवा करता है नहीं करता है। तो एक बाप अपने बेटे की सेवा कर रहा है तो क्या बेटा बाप बन गया और बाप बेटा हो गया? बाप बाप ही रहेगा। वैसे भगवान ने एक बार शिव जी की सेवा कर दी तो क्या भगवान बेटे बन गए, छोटे हो गए और शिव जी बड़े हो गए? जो बड़ा है वो बड़ा ही रहता है। और भगवान तो कहते हैं मैं मेरे भक्त के अधीन हूं, मैं मेरे भक्त की सेवा करता हूं। और ब्रह्मा जी शिव जी के तत्व को बहुत सुंदर बताते हैं। शिव जी जो है एक सेपरेट तत्व है और सब जीव तत्व ईश तत्व शक्ति तत्व अवतार तत्व ये सब तत्व है पंच तत्व, परंतु शिव जी जो है एक सेपरेट शिव तत्व है। इस तत्व को समझना बहुत मुश्किल है परंतु ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में एक दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात, जैसे एक दूध में जामुन डालकर उसे दही बनाया जाए, दूध दही हो जाता है। तो आप देखिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि दही जो है वह शिव जी है और दूध जो है वह कृष्ण है। दही और दूध में जितना अंतर है उतना अंतर कृष्ण और शिव जी में है। अब आप देखिए दही किससे बनता है? दूध से। शिव जी कहां से आए? भगवान से। परंतु दूध दही बन सकता है, कृष्ण शिव जी बन गए, परंतु दही दूध बन सकता है? शिव जी फिर भगवान नहीं बन सकते हैं। तो इस प्रकार इस तत्व को समझकर इसे जानना और मानना चाहिए। तो इस प्रकार से फिर हनुमान जी के बारे में पेंडिंग रखते हैं, आगे जब कथा होगी तब बताएंगे। लेकिन दुर्गा जी के बारे में समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। दुर्गा जो है वह शक्ति तत्व है, शक्ति है। और भगवान ने दुर्गा जी को इस संसार में जितने भी कुटुंब है जितने भी फैमिली है उनको संभालने के लिए नियुक्त किया है। परंतु इस संसार में तो कितने सारे फैमिली हैं, दुर्गा जी अकेले कैसे संभालें? इसलिए दुर्गा जी अपने से कई देवियों को प्रकट करती हैं, जिसे कुल देवी कहा जाता है। एक कुल का ध्यान रखने के लिए दुर्गा जी कुल देवी को प्रकट करती हैं और सबके कुल में एक एक कुल देवी होती है। ये कुल देवी का काम क्या है? उस कुल को देखना और उसका रिपोर्ट देना भगवान को। लेकिन कुछ लोग कहते हैं बस कुल देवी ही भगवान है। कुल देवी एक देवी है जो दुर्गा जी से प्रकट हुई है और वह देखती हैं सबको। तो इस प्रकार से ये कुल देवी के बारे में दुर्गा जी का यह अंश है। और दुर्गा जी को स्पेशल भगवान ने सेवा दी है सबको दुखी करने के लिए। कहा है कि सबको दुखी करो। तब मन में प्रश्न होगा भगवान हमको दुखी करना क्यों चाहते हैं? वास्तव में इसके पीछे भगवान का बहुत बड़ा उद्देश्य है। भगवान अल्टीमेट हमको सुखी करना चाहते हैं, इसलिए दुर्गा को कहते हैं कि दुख दो। क्यों? क्योंकि तो भगवान को पता है कि जब तक यह जीव इस भौतिक जगत में रहेगा तब तक दुखी रहेगा। मेरे धाम में जब तक नहीं आएगा यह जीव तब तक वह सुखी नहीं होगा। और यह जीव भगवान के धाम में तब जा सकता है जब यहां पर दुख का अनुभव करे। तो दुख का अनुभव कराने के लिए दुर्गा को कहा है कि भाई जरा अनुभव कराओ ताकि ये लोग भजन भक्ति में लगे और मेरे धाम में आए। आप देखो संसार में जब तक व्यक्ति दुखी नहीं होता है तब तक भक्ति में नहीं आता है। दुर्गा जी इसलिए दुखी करती हैं ताकि लोग भक्ति में लगे। तो दुर्गा जी को यह सेवा प्रदान की है और इस प्रकार ये सब देवी देवता हैं। परंतु अब प्रश्न ये हो सकता है कि अब तक तो हम ये देवी देवताओं की पूजा और इसके फोटो और ये मंदिर में इनकी पूजा करते थे और आज पता चला कि कृष्ण ही भगवान है तो अब कैसे देवताओं को छोड़े और कैसे भगवान को कृष्ण की भक्ति करे? क्या गड़बड़ हो जाएगी? क्या अपराध होगा? पाप होगा? कुछ नहीं होगा। आप टेंशन मत लीजिए। जो सत्य है वह सत्य है, कृष्ण ही भगवान है। और जिस दिन से यह ज्ञान होता है उस दिन से उसे अप्लाई करना चाहिए। तो फिर प्रश्न हो सकता है कृष्ण के साथ कैसे रहे और देवी देवताओं के साथ कैसे? देखिए मैं अक्सर कहता हूं, बारंबार आपको रिपीट कर रहा हूं, कृष्ण ही भगवान है, अन्य सब देवी देवता है। इसका अर्थ यह नहीं कि देवी देवताओं को निग्लेक्ट करना चाहिए। रामायण में भगवान ने यहां तक कह दिया, शिव द्रोही मम भगत कहावा। यदि कोई मेरी बहुत बड़ी भक्ति करे और यह सब देवी देवताओं से द्रोह करे, सो नर नारकी गति पावा, वह नारकीय लोकों में, वह नरक में जाएगा। एक भक्त को चाहिए भगवान की भक्ति करे और देवी देवताओं को आदर दे, सम्मान दे। अब देखिए, हम छोटे से छोटे भक्त को भी सम्मान देते हैं तो ये तो बहुत शुद्ध भक्त हैं, भगवान की सेवा में लगे हैं, इसे आदर देना चाहिए। तो प्रश्न हो सकता है कि कैसे हम व्यवहार करें ये सबके साथ। तो बस आपको एक एग्जाम्पल से समझ जाएंगे, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। देवताओं के साथ कैसे रहना है, भगवान के साथ, केवल एक एग्जाम्पल आप सुन लीजिए कि जब किसी लड़की का विवाह होता है, लड़की का विवाह अपने पति के साथ होता है और पति के साथ विवाह करके जब वो ससुराल में जाती है, तब ससुराल में उसे सबकी सेवा करनी होती है। ऐसा नहीं कि मेरे पति के साथ विवाह हुआ है तो पति की ही सेवा करूंगी, सास की, ससुर की, ननंद की, देवर की, ज्येष्ठ की, इनकी सेवा नहीं करूंगी। खैर, मैं आज की स्त्रियों की बात नहीं कर रहा हूं, आप ये मत पकड़िए कि आज की स्त्रियां नहीं करती हैं। मैं स्टैंडर्ड बात कर रहा हूं, करनी चाहिए। अब आप देखिए, जो विवाहित पत्नी होती हैं, वे अपने घर में सब की सेवा करती हैं, अपने सास की सेवा करती हैं, ससुर की सेवा करती हैं, ननंद की सेवा करती हैं, हैं? देवर की सेवा करती हैं, परंतु प्रेम किससे करेगी, अपने पति से। ठीक उसी प्रकार एक भक्त को सभी देवताओं को आदर देना है, परंतु प्रेम किससे करना है, कृष्ण से। यह है व्यवहार, सिंपल, समझ में आ गया। आदर सबको दो, मंदिर में भी जा सकते हो, प्रणाम करो, भगवान कृष्ण की भक्ति मांगो, परंतु सेवा, प्रेम मात्र कृष्ण से करना है। तो इस प्रकार देवताओं के साथ और कृष्ण के साथ व्यवहार है, और भी बहुत कुछ। अब देवताओं के बारे में, भगवान के बारे में जान लिया, भगवान के रूप के बारे में, अब ये प्रश्न होगा, ठीक है, ये समझ में आ गया, कृष्ण ही भगवान है और शिव जी, गणेश जी, दुर्गा जी, ये सब देवी देवता है, 33 करोड़ देवी देवता। परंतु अब प्रश्न ये है कि राम, नरसिंह, वामन, वराह, ये सब कौन है? तो ये सब भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं। ये अवतार क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, ये सब हम कल चर्चा करेंगे, और इसी के साथ कल प्रकृति, काल और कर्म के बारे में चर्चा करेंगे, और कुछ भगवद गीता को हमारे प्रैक्टिकल जीवन में कैसे अप्लाई करें, यह भी हम श्रवण करेंगे। तो आप सब लोग कल आइए और यह सब टॉपिक के बारे में श्रवण कीजिए। हरे कृष्णा कृष्णा हरे। ब्रह्म और माया एक ही या अलग है? ठीक, प्रभु जी का प्रश्न है, ब्रह्म और माया एक है या अलग है? ब्रह्म और माया अलग है। ब्रह्म और माया में जमीन आसमान का अंतर है। यद्यपि ये माया जो है ब्रह्म की, भगवान की शक्ति है, परंतु भगवान कभी माया से प्रभावित नहीं होते हैं। जहां कृष्ण तहार नहीं मायार अधिकार, जहां कृष्ण होते हैं वहां माया नहीं होती। तो माया जो है भगवान की शक्ति है, ये पहली बात है। माया किसकी है? भगवान की है, परंतु इस माया से भगवान प्रभावित नहीं होते। ठीक है, और कोई प्रश्न? वास्तव में सबसे बड़ा धर्म सनातन धर्म है, सबसे बड़ा धर्म सनातन धर्म है। और ये सनातन धर्म क्यों बड़ा है, ये मैं आपको कल बताऊंगा, इसका उत्तर कल के प्रवचन में आ जाएगा। पूछिए कभी। यम, ब्रह्मा, वरुणेंद्र, अच्छा अच्छा, उनका मीनिंग मैं कल बताऊंगा, ये कहाँ कहाँ है। अरे यहाँ मैं लिखूंगा, आप लोग लिख लीजिएगा बाद में। हरे कृष्णा।
हेलो, हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा,
हरि बोल। आपने देवताओं के बारे में बोला, तो कुछ कुछ लोग होते हैं वो लोग देवी को बलि चढ़ाते हैं, उसके बारे में क्या प्रभु जी?
देवी को कभी बलि नहीं चढ़ानी चाहिए, देवी बलि से प्रसन्न नहीं होती है। और ये देवी की इच्छा कभी नहीं होती है कि किसी भी जीव का नाश हो और मुझे चढ़ाया जाए। देवी कभी मांस नहीं खाती है। आप देखिए संसार के छोटे भक्त कांदा लहसुन भी नहीं खाते हैं, वो तो शुद्ध भक्त हैं, वे कभी नहीं खाते हैं। तो गलत है।
हरे कृष्णा,
पूछिए।
हमारे वाइफ ने बताया है,
हाँ,
जो कुल देवत जो है,
हाँ,
हमारे फैमिली में कुल देवत है, लेकिन अभी हम लोग हरे कृष्ण से आने के बाद हम लोग सब बंद कर दिए, लेकिन हमारे फैमिली में कुछ मेंबर लोग ऐसे है कि पहले से परंपरा पीढ़ी में आते रहे कि जो दशहरे के जो नवमी की जो पूजा होती है वहाँ पहले से बोलते आए और करते है, इससे बाद भी हम करते रह गए। ऐसे बोलते हैं वो लोग कि उनको बलि देने पर हम लोग कुछ कर नहीं कर सकते है, और बलि ही श्रेष्ठ है, उसको हम बलि हम बंद नहीं कर सकते है, अगर कर दिए तो हमारे वंश में कुछ आगे पीछे कुछ हो सकते है और होते रहते हैं, इसके लिए हम लोग को बलि नहीं बंद करना चाहते है। इसके लिए आपके पास क्या जवाब है, या हमारा जानना बहुत जरूरी है कि हमको वो प्रकार से हम प्रसार कर सकते है आपके जो भाव है।
बहुत सुंदर प्रश्न है।
कृष्ण प्रभु,
हरे कृष्ण। बलि आपको नहीं देनी चाहिए, सबसे पहली बात। यदि आप हमारा मानते हैं, शास्त्र में बलि वर्जित है और कलयुग में तो विशेष रूप से वर्जित है। कलयुग में पांच चीज वर्जित है, आप जानते हैं, वेद में लिखा है यह बात। और चैतन्य महाप्रभु चांद काजी को यह बात बताते हैं, माता पिता मारी खाबो ये वो कौन धर्म, जिस गाय का दूध पीते हो, जिसका दूध हम पीते हैं वो तो हमारी माँ है, और बकरी का भी दूध होता है, ये पशुओं को मारकर खाना ये कौन सा बड़ा धर्म है, और उसमें भी कलयुग में कलो पंच वर्जयेत, कलयुग में पांच चीज वर्जित है। कौन सी? कलयुग में सन्यास वर्जित है, कलयुग में बलि वर्जित है, नर बलि वर्जित है, अपने देवर से पुत्र उत्पत्ति वर्जित है। इस प्रकार कलयुग में बलि वर्जित है। यदि आपके फैमिली में कहते हैं तो आप बहिष्कार कीजिए और आप उसमें थोड़ा भी भाग मत लीजिए, और आप हम पर विश्वास रखिए, शास्त्र पर विश्वास रखिए, आप बलि नहीं देंगे, भक्ति करेंगे, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ये हम विश्वास दिलाते हैं। आप देखिए हमारे फैमिली में मैं खुद मेरी बात कर रहा हूँ, हमारे कुटुंब में भी कुल देवी है और ये सब कुछ होता है, इतना बड़ा नहीं होता है बलि का, लेकिन लोग करते हैं, लेकिन हम आदर देते हैं, प्रणाम करते हैं, परंतु इसमें भाग नहीं लेते हैं। और आज तक मुझे और मेरे फैमिली को कुछ नहीं हुआ, और ये जो करते हैं उनके फैमिली वाले को ये माताजी हैरान करती रहती हैं, परेशान करती रहती हैं, मरते रहते हैं, सब कुछ होता रहता है, हमें कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, क्योंकि हमें विश्वास है कृष्ण के ऊपर, विश्वास होना चाहिए। यह भक्ति कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, और अड़ग रहिए इस पर, और पशु हत्या तो न हो, ये सबसे पहले होना चाहिए, ठीक है। किसी का प्रश्न होगा तो आप कल पूछिए, लिखकर लाइए, या कल पूछ सकते हैं, या लास्ट में आप मुझे पर्सनल मिलिए।